ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और उसकी भगिनी संस्था राज्यों का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा आयोजित सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज वार समग्र भारत देश के राष्ट्रीय महासम्मेलन का जब हम उद्घाटन करने जा रहे हैं तो इसका शुभारंभ करते हैं स्टेज के महानुभावों को स्टेज पर आमंत्रित करते। हम सभी के मध्य में आज के मुख्य उद्घाटक आदरणीय भ्राता पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत इस स्टेज पर करते हैं। आप पधारिए। आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय भ्राता डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, कुलपति श्री चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, आपको भी हम सम्मान स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर आदरणीय भगिनी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी प्रभा दीदी जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी राजूभाई उपाध्यक्ष श्री कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, आदरणीय राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, आदरणीय ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निर्देशालय लखनऊ, आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। हमारा भारत देश संस्कृति सभ्यता और संस्कार की त्रिवेणी को लेकर के चलता हुआ समग्र विश्व के लिए एक दीवादांडी, एक बहुत ही अच्छा लाइट हाउस है। इसी भारत देश की संस्कृति के अंदर दो शब्द हम हमेशा सुनते हैं, एक है कृषि और दूसरा है ऋषि। कृषि और ऋषियों के इस देश के अंदर फिर से इसी दैवी संस्कृति के द्वारा रियल ग्राम स्वराज्य लाने की एक शुभ प्रेरणा का विचार बिंदु आज इस राष्ट्रीय महासम्मेलन के अंदर हम रखने जा रहे हैं। चलो इस सम्मेलन की उद्घाटन विधि में सबसे पहले हम परम हस्ती परम कृषक परम पिता परमात्मा का आह्वान करें, 3 मिनट उसकी दिव्य स्मृति में बैठे। जिस किसी के भी पास मोबाइल है, आप सभी से नम्र अनुरोध है अपने अपने मोबाइल वाइब्रेट पर या तो साइलेंट टोन पर रखेंगे और एकाग्रता से परमात्मा का स्मरण करेंगे।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, उच्च विचार शुभ कर्मों से उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बल से झर झर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
स्वागत। वो भारत देश की एक बहुत ही अच्छी शालीनता और सभ्यता है। स्वागत। वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। स्वागत। वो हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। हमारे सभी मेहमानों का बेज के द्वारा और आज स्वागत एक नए तरीके के द्वारा बहुत ही सुंदर तुलसी के पौधे से हम सर्व अपने आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से नम्र अनुरोध करती हूँ कि स्टेज पर आमंत्रित हमारे सभी मेहमानों को बेज और तुलसी के इन दिव्य पौधों से अभिनंदित करें, स्वागत करें। स्वागत की यह सुंदर परंपरा हमारे भारत देश की एक पहचान है, हम सभी का गर्व है। और इसी संस्कृति को साथ लेते हुए आदरणीय भ्राता पुरुषोत्तम रूपाला जी, लोकसभा सांसद श्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री, आपका तालियों से भी स्वागत है और बेज और तुलसी के सुंदर सर पौधे से भी अभिवादन है। आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी प्रभा दीदी जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई, आदरणीय सुनंदा दीदी जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमार पत्नी विशाल भाई जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी, हम सभी की तालियों का साथ इस स्वागत की परंपरा को चार चांद लगाएगा, अपनी हेल्थ को भी बढ़ाएगा और वातावरण को आह्लादक बनाएगा। हाँ, चालू रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत की श्रृंखला को एक नया ओप देने के लिए हम सभी के बीच में पधार रही है मेहसाणा की कुमारियाँ। बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य हम सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मेहसाणा की कुमारियां।
नाचे गाए पल्ली खुश जैसी बहार चमकाए धरती पे तारे, अब की मौत हमको भी महकाए प्यारी। कुछ ना कही बस हवा के संगीत सुनते रहे, करेंगे महसूस इसमें विधाता की बढ़ते परम।
धन्यवाद फिर से आप सभी का। दीदी जी अभिनंदन कर रही, सभी कुमारियां आई है दीदी के पास। बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुति हम सभी के सामने मेहसाणा सेवा केंद्र की कुमारियों ने रखी। दीदी जी आप सभी का, उनके मेन ट्रेनर का, आप सब की तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं। हम इन्हों का अभिनंदन तालियों से करें, हृदय से करें, दुआओं से करें। अभी स्वागत की परंपरा को शब्दों का स्वरूप देकर के अपनी भावनाओं के साथ पधार रहे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो शांत, स्थिर और सौम्य है, रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकता से भरपूर है। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, शाश्वत यौगिक खेती योजना एवं ग्राम दत्तक योजना के भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। शाश्वत यौगिक खेती की सेवाओं को लोकभोग्य बनाने के लिए आपने पूरे भारत देश में भ्रमण किया है और विश्व के पांचों ही खंडों के अंदर आपने ईश्वरीय सेवा अर्थ अपनी यात्रा की हुई है। हम सभी का स्वागत अभिनंदन शब्दों से करने के लिए पधार रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी।
ओम शांति, सभी प्यार से बोलो ओम शांति। सर्वात्माओं के कल्याणकारी हम सबके अति प्यारे परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, आज की सम्माननीय मंच और आप सभी विशेष इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारतवर्ष के सभी कृषि अधिकारीगण, वैज्ञानिक तथा किसान भाइयों और बहनों, आज बड़े हर्ष का दिन है कि हम सभी एक ऐसे सुंदर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारी सनातन कृषि संस्कृति क्या थी और कैसे इस भारत में पुनः लागू की जा सकती है, जिसके आधार से हमारे भारत देश के हर गांव स्वनिर्भर बने, स्वराज्य प्राप्त हो। इस विषय के अंतर्गत आज के इस उद्घाटन और स्वागत सत्र में हमारे सम्माननीय अति स्नेही पुरुषोत्तम रूपाला भाई जी, जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के हर सेवाओं में समय पर समय अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मुझे याद है कि कई कार्यक्रमों में हम एक साथ एक मंच पर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली विज्ञान भवन हो, चाहे गुजरात के शाहपुर में सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र के कार्यक्रमों में आप समय पर समय ब्रह्मा कुमारीज के अनेक कार्यक्रमों में आते रहे हैं और आज हमारे इस छोटे से निमंत्रण को स्वीकार करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए विशेष पधारे हैं। हम अपने आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हैं, बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे लौकिक अलौकिक जन्म स्थान से पधारे हुए हमारे अति स्नेही कुलपति जी, जो कानपुर से पधारे हैं, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से, इस कार्यक्रम में प्रथम बार आए हैं, लेकिन मुझे समाचार मिलते रहे हैं कि आप सदा ही अपने विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज की भाई बहनों को आमंत्रित करके विद्यार्थियों के लिए अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और खुद भी सेवा केंद्र पर जाकर भाई बहनों से समय पर समय मिलते हैं। ऐसे भ्राता जी का और इनके साथ इनकी आई हुई मिसेज का बहुत बहुत मैं दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय बद्री विशाल भाई, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बहुत सम्माननीय सदस्य है और बहुत शुभचिंतक और इस प्रभाग को दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान सदा ही देते रहते हैं, आप आज लखनऊ से पधारे हैं। बद्री विशाल भाई पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निदेशालय लखनऊ से हैं। कोई भी कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन इस प्रभाग को समय पर समय मिलता रहता है। हम अपने बद्री विशाल भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस ज्ञान सरोवर परिसर की निर्देशिका हमारी आदरणीय प्रभा दीदी जी, जो अपने मार्गदर्शन से सभी की बहुत अच्छी आध्यात्मिक पालना कर रही हैं। प्रभा दीदी इस ज्ञान सरोवर परिसर में रह करके यहाँ के भाई बहनों की, आने वाले मेहमानों की बहुत सुंदर मेहमान नवाजी करती हैं। हम प्रभा दीदी का भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी आदरणीय सहला दीदी जी, जिस प्रभाग की अध्यक्षा हैं और विशेष इनके ही उमंग उत्साह से समय पर समय पूरे भारत के अंदर अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सहला दीदी जी का सदा ही रहता है कि अधिक से अधिक गांव में हम आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचार प्रसार करें, अभियान निकालें, सम्मेलन करें और साथ साथ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो जुड़ी हुई हमारी आध्यात्मिक बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, वो इस बात को समझें और सभी अपने योग के सुंदर प्रयोग से भारत देश को आगे से आगे ले जाने में अपना योगदान दें। ऐसी शुभचिंतक आत्मा को, सरला दीदी को मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे दो नेशनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित हैं, हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी जो विशेष कृषि क्षेत्र में और जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है शाश्वत योगी खेती का, उसकी मार्गदर्शिका, उनका निर्देशन आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ हुआ था, आज ईश्वरी विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आज इस मंच पर विराजमान हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस स्टेज का कुशल संचालन करने हेतु हमारी आदरणीय तृप्ति दीदी जो सूरत से पधारी हैं, इस प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आप भी हैं और आप बहुत उमंग उत्साह से ग्राम विकास की सेवाओं में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और दिन रात इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप सबको हर प्रकार की सुविधा एकोमोडेशन देने में हमारे सुमंत भाई जी जो इस विश्वविद्यालय के और इस प्रभाग के कोऑर्डिनेटर्स, मधुबन कोऑर्डिनेटर्स, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इस सुंदर आध्यात्मिक परिसर में पधारे हैं, आप 3 दिन यहां पर ज्ञान सरोवर में रहेंगे, यहां की आध्यात्मिक शक्तियों का भरपूर आनंद लेंगे, लेकिन साथ साथ मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि यहां के वातावरण में आप सभी सहज राजयोग के अच्छे अच्छे अनुभव करके यहां से जाएं, क्योंकि योग एक इतनी सुंदर आध्यात्मिक विधि है जिससे असंभव को भी संभव किया जा सकता है और ये हम सबका प्रैक्टिकल अनुभव है। खेती के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती पर हमारी सरकार का बहुत ध्यान है, हर प्रकार से वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन ये ईश्वरी विश्वविद्यालय जो आध्यात्मिक सेवाएं दे रहा है उसका मूल लक्ष्य है व्यक्ति का चिंतन चेंज हो, उसका चरित्र ऊंचा उठे, उसका चिंतन चरित्र अगर अच्छा बन गया तो उसकी भावनाएं, उसकी संकल्प शक्ति, जो विचार करेंगे उसका परिणाम उन्हें अवश्य मिलेगा। शाश्वत योगी खेती जो एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका एक सुंदर मॉडल हम लोगों ने तपोवन में नीचे आबू रोड में बनवाया है, उसको देख करके सभी प्रांत के अधिकारीगण अपने अपने प्रांत से किसानों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए भेज रहे हैं और बहुत सुंदर सेवाएं पूरे भारत के हर प्रांत की चल रही हैं। आप सब यहाँ आए हैं, मैं ये भी आग्रह करूँगा कि समय निकाल करके थोड़ा समय भी जब नीचे जाएं तो उस मॉडल का अवलोकन करें और उसके आधार से अपने अपने क्षेत्र में भी एक सुंदर मॉडल तैयार करें जिससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो कि हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का पेड़ पौधों पर, वनस्पति पर, जीव जंतुओं पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसी योगिक खेती जो हमारे चिंतन को, हमारे चरित्र को परिवर्तन कर सकती है, हमारे सुंदर आभा मंडल से, वाइब्रेशन से व्यक्ति, प्रकृति सब कुछ परिवर्तन हो सकती है। उसके प्रयोग हैं यहाँ पर और आप सब उसका अनुभव करके यहाँ से जाएंगे। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आपको अगर कोई भी सुविधा की आवश्यकता हो तो हमारा ऑफिस है नीचे, मिल सकते हैं, राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सभी जो यहाँ पधारे सबका मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ओम शांति।
सभी का सम्मान से स्वागत करने वाले आदरणीय राजू भाई जी का भी हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी स्वागत की इस कड़ी को और ही सुंदर और बहुत ही खुशनुमा बनाने के लिए पहुंचे हैं हम सभी के बीच में मधुर वाणी ग्रुप, आदरणीय ब्रह्मा कुमार सतीश भाई, आदरणीय ब्रह्मा कुमार नितिन भाई, वितिंद्र भाई और गोविंद भाई हम सब के बीच में उपस्थित हैं। आपकी एक बहुत सुंदर विशेषता है, आप जो यह गीत सुनेंगे वो स्वरचित गीत हैं। जैसा समय, जैसा प्रसंग और जैसा ग्रुप, उस अनुसार उनको शब्दों का रूप गीत के माध्यम से देकर के सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक ईश्वरीय कला परमात्मा ने आपको दी है। मधुरवाणी ग्रुप का हम पहले स्वागत करते हैं और फिर स्वागत स्वीकार करेंगे सुंदर गीत के द्वारा।
आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। शुभागमन से आपके आनंद ही आनंद है, शुभागमन से आपके आनंद ही आनंद है। सनातन कृषि संस्कृति से ग्राम स्वराज होने वाला, गोकुल गांव बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला। और आप आए प्रभु के घर में प्रभु अभिनंदन करने वाला, भारत विश्व गुरु बनने वाला, भारत स्वर्ग बनने वाला। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब अपना स्वागत।
संस्कृति से ग्राम स्वराज आने वाला, गोकुल गांव बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला। आप आए प्रभु के घर में हो, आप आए प्रभु के घर में, प्रभु स्वागत है करने वाला। विश्व गुरु होने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला। गोकुल गांव बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला। आध्यात्मिकता, आधुनिकता, कृषि में संतुलन होगा, मिट्टी, पर्यावरण और जीवों का संरक्षण होगा। ओ आध्यात्मिकता, आधुनिकता, कृषि में संतुलन होगा, मिट्टी, पर्यावरण और जीवों का संरक्षण होगा। चलो प्रकृति की गोद में हो, चलो प्रकृति की गोद में। भारत गांव में बसने वाला, विश्व गुरु होने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला। गोकुल गांव बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला।
यहाँ इन वादियों में आने पर जन्मों जन्मों की थकान मिट जाती है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तालियों के साथ अपना स्वागत करते रहे।
आत्मनिर्भरता के लिए मूल्यनिष्ठ होंगे किसान, आत्मनिर्भर गांव से होगा स्वर्णिम भारत का निर्माण। ओ आत्मनिर्भरता के लिए मूल्यनिष्ठ होंगे किसान, आत्मनिर्भर गांव से होगा स्वर्णिम भारत का निर्माण। आध्यात्मिकता के द्वारा हो, आध्यात्मिकता के द्वारा हर संकट हल होने वाला, विश्व गुरु होने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला, गोकुल का वो बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला। सनातन संस्कृति की हो रही है स्थापना, ज्ञान सरोवर से कृषि संस्कृति की है प्रस्तावना। ओ फिर सनातन संस्कृति की हो रही है स्थापना, ज्ञान सरोवर से कृषि संस्कृति की है प्रस्तावना। शिव से शक्तियों का मिलन हो, शिव से शक्तियों का मिलन, जग परिवर्तन करने वाला, विश्व गुरु बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला, गोकुल का वो बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला। आप आए प्रभु के घर में हो, आप आए प्रभु के घर में, प्रभु स्वागत है करने वाला, विश्व गुरु होने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला, गोकुल का वो बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला, विश्व गुरु होने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला, गोकुल का वो बनने वाला, भारत है स्वर्ग बनने वाला।
बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। कितनी सुंदर प्रवचन की माला को पंक्तियों का स्वरूप देना, ये कोई कम दिव्य बुद्धि की बात नहीं है। फिर से एक बार तालियों से इस मधुर वाणी ग्रुप को हम सम्मानित करें और बहुत ही स्नेह से, दिल की दुआओं से आप सबको, सबकी तरफ से अभिनंदन है, अभिनंदन है। जिस विषय को लेकर के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसके पीछे का भाव, भावना, लक्ष्य क्या है, उसको विस्तृत रूप से हम सभी के मध्य में लेकर के पधार रहे हैं एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसने अपने पूरे जीवन को इस कृषि संस्कृति को ऋषि संस्कृति की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है, आदरणीय ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी। आप हमारे पूर्व असिस्टेंट निर्देशालय डायरेक्टर है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के, आप हमारे कोर कमिटी के मेंबर भी हैं। किसानों के कल्याण के लिए आपने अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं अपने कार्यकाल के दरमियान बनाई हैं और भारत देश के लाखों किसानों की आशीर्वाद के आप पात्र बने हैं। सरकार के द्वारा आपको अनेक अवार्ड्स और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा 25 जितने अभियान किसानों के उद्धार और कल्याण के लिए निकले हुए हैं। आप एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और विश्व सेवा को अपना जीवन मंत्र बनाया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सब के सामने रखने जा रहे हैं आज के मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी।
ओम शांति। धीमी आवाज आई, थोड़ा फिर से। ओम शांति। आज इस सभा में कितने लोग पहली बार आए हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। अरे वाह, तो मुझे बहुत मजा आएगा बोलने में। सबके लिए ताली। जो पहली बार यहाँ पर इस विशेष कैंपस में पधारे हैं, ये अद्भुत स्थान है और यहाँ की रमणीकता का अनुभव आप सभी करने लगे होंगे और आगे चल करके आपको अनुभव बढ़ते ही जाएंगे और अनुभव की गहराइयों में आप खो जाएंगे। और सनातन कृषि संस्कृति जिसकी आज चर्चा होने जा रही है, शुरुआत होने जा रही है, अगले 3-4 दिन तक चलेगी, यहाँ पर आपको रोम रोम में, कण कण में रची बसी दिखेगी। आज का ये मंच अद्भुत है और इस मंच में एक से एक अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। भ्राता पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिनको मैंने कई बार सुना है, रोम रोम में इनके किसानों का कल्याण, ग्रामीणों का कल्याण, प्रकृति से प्यार बसा हुआ है। डॉक्टर आनंद कुमार जी, इनके कृषि विश्वविद्यालय में मैं गया था, एक हमारा लेक्चर रखा हुआ था और संयोग से उस दिन कोई एमपी आ गए थे आपसे मिलने के लिए, तो आप बीच में छोड़ के चले गए थे। आज आप पूरा सुनेंगे और आज हमारे घर में आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, यहाँ स्वागत है। आदरणीय सरला दीदी जी जो हम सबकी संरक्षक हैं, हम सबको प्रेरित करती रहती हैं, राजू भाई साहब जो बड़े भाई हैं लेकिन हमेशा अपने आप को जमीन से जोड़ करके रखते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको आगे बढ़ाते रहते हैं, सुनंदा दीदी जी और तृप्ति बहन नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सरकारी किसानों की सेवा के लिए समर्पित हैं, सुमंत भाई जी जो मुख्यालय में बैठ करके और यहाँ से पूरे देश के लोगों को गाइड करते हैं, सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, और बहुत सारे विशेष लोग यहाँ पर सभा में बैठे हुए हैं। पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमारे बीच में पीयूष शर्मा जी, निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान उत्तर प्रदेश से हैं, डॉक्टर एलएस यादव जी हैं, बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे समाजसेवी, बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभा ही बुद्धिजीवियों की है और ये कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही होता है कि एक से एक दीप को जगा करके अनेक दीप जगाए जाएं। दीपावली में जब एक दीप जगता है, एक बड़ा दीपक, तो उससे अनेक दीपक जगते हैं और एक दीपावली सुंदर सी हो जाती है, चारों ओर प्रकाश हो जाता है। ये विषय इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, सनातन कृषि संस्कृति। सनातन कृषि संस्कृति, कृषि संस्कृति ही है और उसी से सारी संस्कृतियां जुड़ी हुई है और उसके साथ में ग्राम स्वराज जो गांधी जी का सपना था। ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी ने आजादी से पहले देखा था, राम राज का सपना गांधी जी ने आजादी से पहले देखा था और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो रहा है, कहां पे कमी रह जा रही है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। सनातन कृषि संस्कृति क्या है, ग्राम स्वराज क्या है और ग्राम स्वराज की स्थापना में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम कैसे बहुत आसानी से, सरलता से दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रस्तुतिकरण के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। ग्राम स्वराज ये गांव का स्वशासन है, ध्यान रखिएगा शब्द स्वशासन, और इसमें गांधी जी जो चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि गांव हमारे आत्मनिर्भर हों और ये जो गांव है इसका सर्वांगीण विकास हो, आधा अधूरा विकास नहीं होना चाहिए। और ग्राम स्वराज के अंतर्गत आत्मनिर्भरता, सामूहिक भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नैतिक मूल्य और अहिंसा, स्थानीय उत्पादन, हस्तशिल्प को बढ़ावा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सर्वांगीण विकास, ये जो घटक हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब कृषि से ही संबंधित हैं। और गांधी जी कहा करते थे कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव, कोई भी देश केवल आत्मनिर्भर बनकर के ही स्वतंत्र हो सकता है। आत्मनिर्भर बनकर के ही स्वतंत्र हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दो प्रकार के विकल्प हैं इसके लिए। एक तो है कि अधिकाधिक उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। दूसरा है अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन, अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन। उन्होंने कहा कि पहला रास्ता जो अधिकाधिक उत्पादन वाला है वो आर्थिक गुलामी की ओर लेकर के जाता है, और जबकि ये दूसरा जो रास्ता है अधिकाधिक लोगों के द्वारा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा उत्पादन, ये आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हमें आगे ले जाता है। अब ये कौन सी विधा है जिसमें अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन हो सकता है? वह है कृषि। कृषि में बच्चा भी काम करता है, महिलाएं भी काम करती हैं, बूढ़ा भी काम करता है, पूरा का पूरा परिवार काम करता है, और गांव के सभी प्रकार के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें लोहार भी होगा, बढ़ई भी होगा, बहुत सारे लोग जो उससे जुड़े होते हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। और जब खेत में रास तैयार होती है तो उनकी सबकी भागीदारी होती है। तो ये जो खेती है, जो कृषि है, जो सनातन कृषि है, वो सामूहिक प्रयास पर विश्वास करती है, सामूहिक कल्याण पर विश्वास करती है, और इसमें सामूहिक भागीदारी और सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या है उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ये संभव है। तो जो गांधी जी चाह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत बने, वो कृषि के द्वारा ही, सनातन कृषि के द्वारा ही संभव है, जिसमें अधिकाधिक लोग उत्पादन में शामिल होते हैं और केवल कृषि कार्य नहीं करते हैं। कृषि कार्य में उनका टाइम जो जाता है वो 10-12% जाता है, बाकी समय में वो कुटीर उद्योग चलाते हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, ये हमारे भारत में था। पिछले कुछ वर्षों से, जब से औद्योगिकरण हुआ, तब से वो कुटीर उद्योग लुप्त प्राय हो गए, जिनको पुनः जीवित करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और ODOP जो है उसी का एक प्रारूप है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में विशिष्टियां हैं उत्पाद की, और उन्हीं विशिष्टियों को आगे बढ़ाया जाए। तो जब तक हम उसको कुटीर उद्योग से किसान को नहीं जोड़ेंगे, केवल खेती पर निर्भर करेंगे, तो टूट जाएगा और आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। ग्राम स्वराज के सपनों के साकार न होने के कारण क्या थे? मुख्य कारण थे रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया, और आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का अभाव हो गया। हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं, अभी कुछ परंपराओं को मैं यहां पर लूंगा, बहुत सारी परंपराएं हैं, उनको इस थोड़े समय में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उन परंपराओं को नमूने के तौर पर हमने यहां पर रखा हुआ है। आपको लगेगा कि उसमें कितना गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। और दूसरा है केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ही बटके रह गई, और जो पंचायती राज की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं आ पाई, जिसके कारण ग्राम स्वराज का, गांधी जी का सपना साकार नहीं हो पाया। अब गांधी जी को समझने की जरूरत है। गांधी जी जो है वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो इनका जो स्वराज था वो स्वराज्य माना स्व का राज्य। किसका राज्य? स्व का। आत्मा का राज अपनी इंद्रियों पर। जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने आप से प्यार नहीं करता है, वो समाज को कैसे नियंत्रित करेगा, समाज से कैसे प्यार करेगा? तो ये इनका जो आधार था, उस आधार को किसी ने समझा नहीं, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष देश हो गया। और जो मूल बात थी हमारी सनातन संस्कृति की, वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई। इन्होंने कहा जहां प्यार है वही जीवन है। हम कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्यार किससे? प्यार इस प्रकृति से, प्यार उस परमात्मा से। और जब आप स्वशासित होते हैं, स्वानुशासित होते हैं, आपका स्वराज्य स्थापित होता है, तो बाहर भी आप राज्य कर सकते हैं, दूसरे के दिलों पर राज्य कर सकते हैं। तो ये मूलभूत कमी रही, यानी आत्मज्ञान की कमी के कारण, जो कि यहां पर जो ईश्वरी विश्वविद्यालय जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है, सनातन कृषि संस्कृति जिसे हम यौगिक कृषि कहते हैं, उसके अंतर्गत ये पूरी तरीके से समाहित है। ये बहुत प्राचीन संस्कृति है एग्रीकल्चर, और इसी के द्वारा स्वराज और रामराज आ सकता है। सनातन कृषि संस्कृति की जब बात करें तो सनातन जो है वो, सनातन का मतलब होता है सदा के लिए, और संस्कृति का मतलब है संकृति, यानी अच्छा करना। तो सनातन कृषि संस्कृति अर्थात खेती की ऐसी पद्धति जिसके द्वारा सदैव सभी का कल्याण हो। इसके दो पहलू हैं, भौतिक और पराभौतिक, भौतिक या आध्यात्मिक। और इसके मूल में है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। तो सभी में क्या? केवल मानव नहीं, सारे जीव जंतु पशु पक्षी प्रकृति सब कुछ आ जाती है। ये हमारी मूल भावना है भारतीय संस्कृति की। अब प्रकृति कृषि और सामाजिक मूल्यों के बीच में ये संस्कृति तालमेल बिठाती है, और ये हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में, कहानियों में मिलता है। अर्वाची सुभगे भव सीते वंदा मह त्वा, यथा न शुभ का शशि यथा न सुफला शशि, ऋग्वेद का मंत्र है। हम हल की फाली की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं सीता की, और सीता को दिखाते हैं कि हल चलाने से उत्पत्त हुई, उस धरती से पैदा हुई। ये जीवन चक्र है जो धरती से पैदा होती है और धरती में समा जाती है। और साथ में आप देखिए, वो जब पैदा होती है फिर राम को वरती है और राम को अपने साथ में रखती है, और जब राम के साथ जाती है तो वो पंचवटी में रहती है। पांच प्रकार के वृक्ष जो पंचवटी में कहे गए हैं, बरगद, पीपल, बेल, आंवला और अशोक, ये पांच प्रकार के वृक्ष होते हैं जिसके नीचे वो निवास करती है। यानी आत्मा वो प्रकृति से जब प्रेम करती है और राम को साथ में लेती है तो जीवन उसका सुखमय होता है। और जहां वो लोभ में पड़ती है, सोने का हिरण दिखाई देता है, तो राम उससे जुदा हो जाते हैं। फिर वो शोक वाटिका में जाती है, यद्यपि वो भी अशोक वाटिका कही जाती है, वो रावण की अशोक वाटिका है, लेकिन उसके लिए शोक वाटिका है, प्रकृति से प्रेम वहां पर भी है। और उसके बाद जंगल में जाती है परीक्षा देने के लिए, और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को फिर से उसी धरती में समाहित कर देती है। ये आत्मा का चक्र है जो इस धरती यानी शरीर के साथ शुरू होता है, प्रकृति से प्रेम के साथ शुरू होता है, और उस परमात्मा के प्रेम के साथ शुरू होता है, और अंत सम्मान की रक्षा के साथ होता है। ये भारतीय संस्कृति है। और कृष्ण और बलदाव को देखिए, एक को गैयों के साथ दिखाया गया है, एक को हल के साथ दिखाया गया है। कृषि और पशुपालन दोनों का गहरा संबंध है। जब तक हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, तब तक हमारी सनातन संस्कृति जीवित नहीं हो सकती है। यहां तक कि धरती को मां कहा गया, माता भूमि पुत्रोम प्रतिभ्या पर्जन्या पिता सौना पिपर्तु, यानी इस धरती को हम मां की तरह मानते हैं, मां से प्यार किया जाता है, मां को जहर नहीं दिया जाता है। जिस दिन हमारा नाता प्यार का जुड़ जाएगा इस धरती मां से, हम जहर देना भूल जाएंगे और पुनः अपनी उस पुरानी संस्कृति को जीवित कर देंगे। हिरण्यकश्यप राक्षस ने, हिरणाक्ष राक्षस ने धरती को ले जाकर के पाताल में गिरा दिया, और उसको निकाला किसने? किसने निकाला? किसने निकाला? आवाज नहीं आ रही। आज सब भारतीय संस्कृति के पोषक है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? विष्णु ने 12 अवतार लिया, तो आज सभी विष्णु हैं। विष्णु माना पवित्र आत्मा। जब हिरणाक्ष, हिरण प्लस अक्ष, जो सोने पर जिसकी निगाह हो, जो लोभ वृत्ति वाला हो, तो लोभ वृत्ति वाला क्या करेगा? इस धरती को, इस दुनिया को रसातल में ले जाएगा। उस लोभ वृत्ति से निकालने के लिए आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। आप सभी 12 अवतार हैं, आप सबको इस धरती को निकालना है, इस जहर से, इस दलदल से निकालना है, आपको अहंकार से लड़ना है। इंद्र कहता है हमारी पूजा करो, अहंकारी है। कृष्ण कहते हैं नहीं, गोवर्धन की पूजा करो, जहां हमारी गैया चरती हैं, जो हमें औषधि देता है, जो हमें फल फूल देता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो शुद्ध हवा देता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और स्वयं भी गैयों के साथ रहते हैं। ये सनातन संस्कृति है जिसको हमें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आप देखेंगे त्रेता सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग, जब तक सनातन संस्कृति जीवित है तब तक इस धरती पर स्वर्ग है, सुख है। शेर और गाय घाट पानी पीते हैं, और वहां पर नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सभी सुखी हैं। फूल ही फल ही सदा तरुकानन, राही एक सक गज पंचानन। त्रेता युग जिस रामराज की हम परिकल्पना करते हैं, द्वापर युग में भी सुख चैन की बंसी बजती है। यही नहीं, 17वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, और पूरी विश्व की संपत्ति का आधे से अधिक भारत के पास होता है। ये भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक, आप देखें जब चीनी यात्री आता है, उसने लिखा है 14 साल तक फाइयान रहा, और यहां पर उसने जो लिखा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यही राम राज्य है, यही दिन फिर से वापस आ जाए। कैसा प्रकृति से प्रेम है, कैसा इंसानों से प्रेम है, कैसे लोग रहते हैं, कोई भय नहीं, लोग चोरी चकारी नहीं करते, घरों में ताला नहीं लगाते, कोई कठोर दंड नहीं है। सबसे कड़ा दंड था सांप को मारने पर, क्योंकि चूहा जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है किसान का। कृषि संस्कृति को जीवित करने के लिए सबसे बड़ा दंड निर्धारित किया था, सांप को नहीं मार सकते। एक चूहा पूरे साल में 6 से 7 बार प्रजनन करता है, और 5 से लेकर 10 बच्चे पैदा करता है, और इतनी तेजी में उसकी संतति बढ़ती है कि वो तेजी से हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाता है। वो खाता कम है, नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। ये भारतीय संस्कृति है जो आप देखेंगे कि कलयुग में भी जीवित रही। और ये जो कल्चर है, ये कल्चर एग्रीकल्चर से ही निकला है, कोई दूसरा शब्द नहीं है, एग्रीकल्चर ही कल्चर है, यही संस्कृति है, इसी को हमें जीवित करने की जरूरत है। सरदार पटेल जी कहते हैं आई नो ओनली वन कल्चर, दैट इज एग्रीकल्चर। और बाबा ओडुनो कहते हैं देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। यहां पर कोई संस्कृति रह ही नहीं सकती। आप माइनस कर दीजिए एग्रीकल्चर को, जितने भी त्यौहार हैं, होली, दिवाली, लोहड़ी, पोंगल, बिहू, जितने भी त्यौहार हैं, छठ पूजा, जितने भी त्यौहार हैं, आप देखेंगे ये सब कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर आप कृषि को माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं। अभी 26 तारीख को बरगद की पूजा करेंगी महिलाएं, वट सावित्री का व्रत रखेंगी। क्यों वट की पूजा होती है ये समझने की जरूरत है, क्यों सीता जी जाकर के वट वृक्ष के नीचे रहती थी ये समझने की जरूरत है, कैसे जीवाणु को, असंख्य जीवाणु को अपने साथ संरक्षित रखता है, और धरती पर जब गर्मी होती है और जीवाणु कम हो जाते हैं, बारिश होती है, तो वहीं से पूरी धरती पर फिर जमीन पर स्प्रेड होते हैं, और फिर जाकर के वो अपना काम करते हैं, आपकी फसल को उपजाऊ बनाते हैं। देखिए ये द्रौपदी मुर्मू जी क्या कहती हैं, इनका जरा सुनिए कि किस तरीके से।
आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूं, हरियाली,
सिर्फ 2 मिनट,
शुरू से ही मैं हरियाली से
परिचित हूं। समाया हुआ है, आप सुनिएगा ध्यान से।
मैं जो छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे, सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी, मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ, फिर क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखे लकड़ी, इसको अब क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखे लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोले ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं, आज भी ये सूखी लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है, इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुंचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी धरती को क्यों आप नमन करते हो, उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है, आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसीलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ।
ये भारतीय संस्कृति है जो अभी तक हमारे आदिवासियों ने, हमारे ग्रामीण लोगों ने इसको जीवित रखा है। हमारे पूरब में भोजपुरी समाज में जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की एक उसकी तरफ से एक गीत गाया जाता है, निमिया की दाढ़ जन काटा वो बाबा निमिया चिरैया बसेर। वो जब लड़की विदा होती है, देखिए कितना इमोशनल क्षण है, वो लड़की विदा हो रही है और अपने पिताजी से कह रही है कि पिताजी दरवाजे पर जो नीम है, ये पेड़ है, इसकी डाल मत काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि इसमें चिड़ियों का बसेरा है और चिड़ियां बेटियों के समान होती हैं। जब मैं नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी, तो ये माँ हमारी अकेली हो जाएगी। जब चिड़िया बोलेगी तो उसे मेरे होने का एहसास होगा। ये प्रकृति प्रेम है, भारतीय संस्कृति है जो हमारे यहां रची बसी है। इसकी केवल दो लाइनें मैं सुनाऊंगा जो वहां का गायन है, किस तरीके से वो ये भारतीय संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है, इसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और हमारे वैज्ञानिक अनेक प्रयोग करके बता रहे हैं कि कैसे हमारे विचारों का प्रभाव इन वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों पर पड़ता है। ये सारे वैज्ञानिकों के रिसर्च हैं, इसे मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। जो हमारे यहाँ लोकगीत गाने की परंपरा थी, धान की रोपाई के समय जो बैलों के गले में घुंघरू बांधते थे, उसके पीछे कितना गहरा साइंस था, ये डॉक्टर टीसी सिंह ने रिसर्च करके बताया है। ये जो केले के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग तरीके के हैं। ये एक ही तरह के पौधे हैं, एक ही तरह के मिट्टी में लगाए गए और एक ही तरह के खाद पानी इनको दिए गए, लेकिन एक को भजन सुनाया गया और दूसरे को विदेशी संगीत सुनाया गया। दोनों में अंतर आप देख लीजिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में था कि जब धान की रोपाई होती थी, लोग गीत गाते थे, भजन गाते थे, वो वाइब्रेशन देने का काम मिस हो रहा है, जिसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम ईश्वरी विश्वविद्यालय कर रहा है। हमारी संस्कृति बारूद की नहीं, बांसुरी की है। हमारे यहां बिल्ली को भी मारने पर क्या होता है, क्या होता है बोलिएगा भाई सभी, सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती। बिल्ली अगर जा रही तो रुक जाना, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, वे आपको नहीं जाना है। हमने आपको बताया कि चूहा कैसे संतति पैदा करता है, कैसे फसल को नुकसान पहुंचाता है, 20-25% नुकसान पहुंचा देता है, और उसका नुकसान की भरपाई की जाए तो सोने की बिल्ली के समान है। और बिल्ली देखिए इतना जबरदस्त सिक्योरिटी गार्ड है कि वो जहां पर आपका अनाज स्टोर होता है वहां बैठी रहेगी चूहे के इंतजार में, और जब उसको सड़क के दूसरे किनारे पर चूहा दिखाई देता है तो पूरी जान लगा करके भागती है। तो इसीलिए कहा गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब आपको नहीं जाना, माना बिल्ली को डिस्टर्ब नहीं करना, वो अपने टारगेट को मिस कर जाएगी। ये भारतीय संस्कृति है। नाग पंचमी में नाग हमको क्या देता है, उसको हम दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो चूहे के बिल में ही रहता है, अपना बिल नहीं बनाता और चूहों को ही खाता है। तो जो साइकिल थी उसको अगर हम तोड़ेंगे, जो प्रकृति का नियम है उसको हम तोड़ेंगे, तो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी। आज वही हुआ है, हमने उस क्रम को तोड़ दिया है, अब उसको फिर से जोड़ने की जरूरत है। ये दर्शन शास्त्र का विषय है कृषि, ये अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना, हम जो देखते हैं उसके बारे में सोचें, ये तितली किस लिए, ये मेढक किस लिए, ये केचुए किस लिए, ये नदियां किस लिए, ये पेड़ किसके लिए, आपको जवाब मिलेगा ये सब हमारे लिए है। हम इनको क्या दे रहे हैं, ये सब हमारे लिए है लेकिन हम इनको क्या दे रहे हैं, इनको मार देना चाहते हैं, इनको खत्म कर देना चाहते हैं, यही हमारी बुद्धिमत्ता है। ये फिर से वापस अपनी संस्कृति को जीवित करना पड़ेगा। ये ऋषि संस्कृति है जो हमारे वृक्ष आयुर्वेद में, अनेक वेदों में वर्णित है कि किस तरीके से प्रेमपूर्ण संबंध हमको प्रकृति से रखना है। ये हमारे दर्शन सभी वेदों में, शास्त्रों में मिलते हैं, और इसके मूल तत्व में अगर हम जाएंगे, कंक्लूड करेंगे, तो प्रकृति प्रेम, गोवंश पर आधारित खेती है, पर्यावरण जैव विविधता का संरक्षण है, सत्य अहिंसा और धर्म से इसका गहरा नाता है, संगठित परिवार और समाज इससे बनता है, ये स्वास्थ्यवर्धक है, लागत कम लाभ अधिक है, आर्थिक सामाजिक और मानसिक तीनों तरीके से ये समाज का विकास करती है। इसलिए हमको किसी भी हालत में इस संस्कृति को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अब ये जो गिरावट आई उसका जो थोड़ा सा आपको झलक दिखाएंगे, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश किया और हमारे कृषि पर ही प्रहार किया। जितने आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के आंदोलन, वो सारे आंदोलन किसानों के थे। वो बढ़ते बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन बन गए, लेकिन उसके बाद फिर जो हमने रासायनिक खेती शुरू किया, परिस्थितिजन्य था। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो परिस्थितिजन्य है। अगर कोई बीमार है, सीरियस है, तो उसे दवा की जरूरत है, लेकिन हमेशा उसे दवा पर रखना, हमेशा वेंटिलेटर पर रखना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उस समय जरूरत थी, हमने रासायनिक खेती शुरू की, लेकिन आज जो स्थिति आ गई है कि प्रकृति विनाश की ओर जा रही है, मिट्टी जो है बीमार हो गई है, उस मिट्टी से बना हुआ हमारा शरीर बीमार हो गया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मित्र कीट समाप्त हो रहे हैं, पोषक अनाज समाप्त हो रहे हैं, और यह द वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट है कि 27 साल बाद अगर यही स्थिति रही तो दाल रोटी आपको नहीं मिलने वाली है। धरती बंजर होती चली जा रही है और लगातार जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटता चला जा रहा है। आप देखें, यहां पर एक हमने तुलनात्मक चार्ट रखा है कि विकृति क्या है और संस्कृति क्या है। इसके बाद मैं 5 मिनट और लूंगा दीदी, मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। ये विकृति जो है प्रकृति का विनाश करती है, जो हमने अपनाया है सिस्टम वो प्रकृति का विनाश कर रही है। ये संस्कृति प्रकृति प्रेम सिखाती है, वो हिंसक है, ये अहिंसक है। वो जीवाणुओं का विनाश करती है, जीवाणुओं में वृद्धि करती है, उसमें लागत अधिक है, इसमें लागत नगण्य है। वो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है, स्वास्थ्यवर्धक है। वो मित्र कीटों का विनाश कर रही है, ये मित्र कीटों में वृद्धि कर रही है। वो उर्वरा शक्ति का क्षण कर रही है, ये वृद्धि कर रही है। उसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, मारो काटो की संस्कृति है, और इसका आध्यात्मिकता का पूर्ण संबंध है और भौतिकता में समन्वय स्थापित करती है। ये असंगठित ग्रामीण व्यवस्था है, ये संगठित ग्रामीण व्यवस्था है। वो कुटीर उद्योगों को खत्म कर रही है, ये कुटीर उद्योगों को बढ़ा रही है। वो पराधीन ग्रामीण व्यवस्था है, ये आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था है। वो ऋषि मुनियों के द्वारा सुझाई गई उसके विपरीत व्यवस्था है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा सुझाई गई व्यवस्था के अनुरूप है। और वो व्यवस्था 5 दशक में बुरी गति को प्राप्त कर चुकी है। और ये व्यवस्था जो संस्कृति है, सनातन कृषि संस्कृति, ये युगों युगों से स्वीकार थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो हमें ग्राम स्वराज के लिए कौन सी विधा को अपनाना चाहिए? सनातन कृषि संस्कृति को या उस विकृति को जिससे सारी दुनिया त्रस्त हो चुकी है? हाथ खड़ा करिएगा जो सनातन कृषि संस्कृति के पक्ष में है। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। निश्चित रूप से यह मिशन कामयाब होगा। आपके दिल को अगर ये बात छू रही है तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि फिर से हम सनातन कृषि संस्कृति को स्थापित करेंगे, धरती माँ के दर्द को समझेंगे और इसको हमने जो यहाँ पर ईश्वरी विश्वविद्यालय ने नाम दिया है, इसको शाश्वत योगी खेती नाम दिया है। योग प्रमुख है क्योंकि योग उस जगत नियंता से, योग उस प्रकृति से, दोनों से प्यार करते हुए जब हम खेती करते हैं तो वो खेती ही वास्तव में सनातन कृषि संस्कृति पर आधारित खेती है। इसको हम योगिक खेती कहते हैं जिसमें सब कुछ प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है और सारे संस्कारों को अपनाया जाता है। बीज संस्कार से लेकर के आभार व्यक्ति तक सारे संस्कार हैं और ये जो आज अशुद्ध अन्न के कारण अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और अशुद्ध मन के कारण कोर्ट कचहरी मुकदमों से पटे पड़े हैं। अन्न और मन दोनों का गहरा संबंध है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है कि हम दोनों को शुद्ध करें। इसके लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें योगी खेती के माध्यम से प्रयास कर रही है। राम राज्य में सब सुंदर सब विरु शरीरा, सभी सुंदर और निरोगी होते हैं और सब नर करें परस्पर प्रीति, सबका आपस में प्यार होता है। तो राम राज्य लाने का काम ये बहने कर रही है तो इसे हम सबका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। इससे पुनः हम आत्मनिर्भर बनते हैं, अपना खाद, अपनी बाजार, अपने संसाधन, अपना श्रम और फिर से वो ग्राम एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लेता है, कुटीर उद्योग, जहां लोहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई, दर्जी, धोबी, माली, कुम्हार, चूड़ियार, इन सब एक साथ जुड़ जाते हैं और सब उस कृषि से जुड़ करके अपने अपने उद्योग को चलाते हैं। गांव में उद्योगों का जाल फैलता है और जैसे जैसे जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है, जो जीवाणु खत्म हो गए हैं पुनर्जीवित होते हैं, तो उससे आर्थिक विकास होने लगता है और मूल्यनिष्ठ संगठित समाज का निर्माण होता है। आज एफपीओ बन रहे हैं और टूट रहे हैं क्योंकि उसमें मूल्य नहीं है, स्वार्थ है। तो मूल्यनिष्ठ संगठन तैयार होता है, व्यसन मुक्त संगठन तैयार होता है और परमात्मा एक है इस आधार पर हम सभी जुड़ते हैं तो एक मत सामाजिक एकता ये कायम होती है और मेडिटेशन के द्वारा लोगों का मानसिक विकास होता है। हम हर तरीके से पुरुष और प्रकृति दोनों को समृद्ध करते हुए संपूर्ण सुख शांति का राज्य स्थापित करते हैं जहां पर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से विकसित लोग होते हैं। उसी दुनिया को, उसी देश को, उसी गांव को हम गोकुल गांव कहते हैं, उसी भारत को हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। अंत में मैं अपनी बात दो लाइनें करके समाप्त करता हूं। यौगिक कृषि में छिपा हुआ है आत्मनिर्भर भारत का राज। यौगिक कृषि में छिपा हुआ है आत्मनिर्भर भारत का राज। आओ इसको फिर अपनाकर ग्राम स्वराज लाएं आज। ओम शांति। थैंक यू।
आपकी अभिव्यक्ति को तीन शब्दों में कहना हो तो यही कह सकते हैं, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। इन तीनों के समन्वय से फिर से कृषि को ऊंचा उठाना आपके दिल के भाव न सिर्फ आज हैं, लेकिन 5 दिवसीय यह राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी वक्ताओं के द्वारा इसी बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेंगे। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है, जितनी एकाग्रता, इंटरेस्ट और अवेयरनेस से आप सभी आज बैठे हैं, 5ों ही दिन सभी सेशन के अंदर अगर आपकी उपस्थिति होगी, जरूर जाने के समय फील करेंगे कि कुछ लेकर के, कुछ पाकर के, कुछ नई सोच अपने जीवन के अंदर धारण करके जा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आदरणीय बद्री विशाल भाई जी। अब समय आ गया है विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने का। हम सभी के बीच में आज के मुख्य उद्घाटक आदरणीय भ्राता पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी उपस्थित हैं, लेकिन मैं उन सभी हमारे फाउंडर मेंबर को भी आगे आमंत्रित कर रही हूँ कि आप भी उद्घाटन विधि में अपने आप को शामिल करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई, आदरणीय महेंद्र भाई गोंदिया, राजेश भाई दवे, बाला साहेब रुंगे कोल्हापुर, जिग्नेश भाई कलोल, कमलेश भाई एक्स मिनिस्टर एमपी, शेखर भाई बेलगाम, चंद्रेश भाई तपोवन, श्याम भाई राठौड़ जाहोटा राजस्थान, कनु भाई अहमदाबाद, बीनू भाई वलसाड, विनोद भाई लोहाटी मुंबई, विजय भाई जिंद पंजाब, सुरेखा दीदी, सुनीता बहन सिकंदराबाद, लक्ष्मी बहन हासी, ज्योति बहन बेलगाम, गीता बहन बोहरा, गीता बहन भिनमाल, क्रीना बहन मुंबई और संगीता बहन कड़ी। आप सभी नीचे जो स्टैंड है माइक के, जिनों के भी नाम बोले कृपया आप जल्दी से आगे आएंगे और अपना स्थान लेंगे। और आदरणीय मंच, आपसे भी मेरा नम्र अनुरोध है कि आप अपने कदम उद्घाटन के तरफ आगे बढ़ाएं। हम सभी के बीच में आज जो मुख्य उद्घाटक आदरणीय रूपाला साहेब पधारे हैं, हम सभी के लिए अनहद खुशी की बात है कि आज के इस सुंदर कार्यक्रम का उद्घाटन आपके वरद हस्तों से होने जा रहा है। हम सभी भी इस उद्घाटन विधि में अपने को संकल्पों के द्वारा, स्मृति के द्वारा और दिव्य भावनाओं के द्वारा जोड़ेंगे।
संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
प्रतीक है। दीपक ऊर्ध्व गति की तरफ इशारा करता है। दीपक एक ऐसा शिक्षक है जो हमें कहता, सदा प्रकाशित रहो और प्रकाशित करो। ऐसे सुंदर दीपकों से आज की उद्घाटन विधि को संपन्न किया। अभी हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में देश के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता आदरणीय भ्राता पुरुषोत्तम रूपाला जी उपस्थित हैं। हम आपका तालियों से अभिनंदन स्वागत करते हैं, जिन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपनी सेवाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री रह चुके हैं। राज्य सरकार में भी आपने कृषि सिंचाई नर्मदा जल योजना जैसी अनेक महत्वपूर्ण विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे बड़ा तो आपका परिचय में यही कहूंगी कि इतना भव्य दिव्य और राष्ट्रीय व्यक्तित्व होने के बावजूद भी आपका स्वभाव सरल और व्यवहार नम्र है। हम सभी सुनेंगे आदरणीय भ्राता पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी।
ओम शांति, राम राम। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ मंथन चल रहा है। मंथन का आज उद्घाटन हो रहा है। ऐसे दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय मंच, हमारे दोनों आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दीदी जी, प्रभा बहन जी एवं सरला दीदी जी, हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार जी, हमको बहुत ही सुंदर प्रस्तावना के स्वरूप में इस आगे कार्यक्रम को कैसे ले जाना है इसका विस्तृत जानकारी हमको जो बद्री विशाल भाई जी ने दिया। उद्घाटन सत्र के लिए मैं मानता हूं ये काफी है और इसमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी विगत सब इसके स्पेसिफिक सत्रों में की जाएगी। ब्रह्मा कुमारी बहन सुनंदा बहन जी और सनत कुमार सुमंद भाई जी, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक मंत्री, हमारे वहां के नेता कमलेश जी और उनके साथीदार भी पधारे हैं और भी कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और राम राम। विषय सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज, तो बहुत बड़ा गहन विषय है। मैं पढ़ रहा था तभी मुझे लगा कि ये टाइटल जो है सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज, उसमें अकेला ऐसा शब्द है जिस पर एक सप्ताह बोला जा सकता है, अकेला कृषि शब्द ऐसा है जिस पर महीनों बातचीत की जा सकती है, अकेला संस्कृति शब्द ऐसा है जिस पर भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, और ग्राम स्वराज जिसके लिए हम सारा संघर्ष कर रहे हैं। और भाई जी ने बताया कि महात्मा जी ने ये सपना देखा था और उसके लिए उन्होंने मेहनत किया था और तभी से लेकर अभी तक कोशिश तो जारी ही है, मगर होता क्या है कि कभी कभी कोशिश करने वालों की क्षमता पर ये निर्भर रहता है। कौन कोशिश करता है, कैसे कोशिश करता है। आजादी का संग्राम भी हम तो 57 से लड़ते थे, मगर वो 47 में हमको उसमें कामयाबी मिली। ऐसे ये संघर्ष भी जारी है, तभी से जारी है। मैं समय की मर्यादा के कारण इसके सभी विषयों को नहीं मैं स्पर्श कर पाऊंगा, मगर जो भी मेरे मन के भाव हैं इसके साथ जोड़ने का कोशिश करता हूं। जो 50 के ऊपर के लोग यहां बैठे होंगे, उन लोगों को एक ग्राम स्वराज का स्मरण करवाना चाहता हूं। हमारा ग्राम स्वराज कैसा था, अब हमें वहां जाने का कोशिश करनी है। हमारे गांव कैसे आत्मनिर्भर थे और उसमें कैसे हम जीवन यापन करते थे। तो हम जो 50 के ऊपर के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा, कुछ उन्हें अनुभव किया होगा कि हम जब भी सुथार के वहां जाते थे तो ऐसे ही दौड़ के चले जाते हैं, ये टूट गया है ठीक करो, ये साथी का खराब हो गया है ठीक करो, ये लकड़ी का ये करो, और करके चले आते थे। ना तो वो हमको पूछता था कि इसका इतना दाम लगेगा, ना तो हम इनको पूछते थे कि क्या देना लेना है। वो काम कर देता था, हम चले आते थे। हम तो उस समय समझो कि बच्चे थे, तो हमारे दिमाग में तो ये याद, ये भी आज हम सोच रहे तो पता लगता था कि ये कौन सी बात हुई। आज आप जाओ कहीं पे भी और बिना दाम के कोई काम करवा के आओ तो देख ले कैसे होता है। तो ये तो होता ही रहता था। लोहार वो अपना काम कर देता था, हम ये बाल कटाने के लिए जाते थे बड़े हक के साथ, और ये खेती में किसान फ्री नहीं होता है, उसको कोई हॉलीडे नहीं होता है, वो तो हफ्ता होता है, कोई त्यौहार होता है तभी घर पे होता है, वरना वो तो खेत में ही मिलता था। तो ना ही उसको पता रहता था कि अपना ये जो बंदा है वो एक सप्ताह से मिला नहीं है तो उसको दाढ़ी बढ़ गई होगी, तो वो वाड़ी पे पहुंचता था और वहां जाके उसको ठीक कर देता था, और वहां से ऐसे ही आ जाता था। वो 2 किलोमीटर पैदल चल के जाता था और कुछ भी नहीं मांगता था। तो उस प्रकार की व्यवस्था पुराने हमारे गांव में थी ही, हमारे पुरखे तो उसी प्रकार ही जीते थे। हम इस गुलामी के कालखंड में वहीं से भटक गए और रास्ता भूल गए हैं। तो मैं ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप फिर से हमारे पुराने रास्ते में लौटाने का प्रयास करने का काम किया। मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत ही प्रचलित है, अभी क्या हो रहा है कि घोर निराशा की बातें करने वालों का एक समय निकल गया, हर चीज में खौफ फैला देते हैं, अब कुछ हो ही नहीं सकता, बस अब सारा दुनिया बिगड़ गया है, अब ये कुछ बच्चे किसी का सुनते नहीं है, नई पीढ़ी है वो इसे करती है, ऐसा एक मत बनाने का कोशिश चल रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, बस अब जो होगा वो आज है उससे खराब ही होगा, ऐसा मान के चलो बस। ऐसे ऐसे नैरेटिव बनाने में बहुत लोग लगे हुए हैं। उसी में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कोट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसे आपके साथ साझा करूं। माना अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, मगर दिया जलाना कहां मना है। कोशिश तो करनी चाहिए। एक कोरोना में ये शब्द प्रयोग आया था आत्मनिर्भर, जब ये कोरोना का संकट आ गया था और लॉकडाउन आया तब किसी को पता नहीं था कि ये लॉकडाउन बला क्या है, वो आ जाने के बाद पता चला था, हमारा किसी का अनुभव तो था नहीं। हम तो थोड़े दिन तो यूं समझ रहे थे कि भाई लॉकडाउन है, अच्छा ये बड़ा झंझट में से थोड़े दिन आराम करेंगे, ये फुर्सत मिल गई। बाद में पता चला कि दिल्ली से बाहर ही नहीं जाना है, तब पता चला कि तो जेल हो गई। उस समय बाद में उन सबको इनका वो असली स्वरूप समझ में आया था, और उसी कालखंड में मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा किया था, और उन्होंने उस समय ये शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था, कभा देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए, और वो खास करके उस समय वैक्सीन में से ये निकला था। कभी देश में बड़े बड़े वो भ्रांति चल रही थी, कौन बनाएगा कैसे बनाएगा, कई नेता लोग तो ऐसे करते थे कि विदेश से मंगाने की, हमको आजादी दे दो हम हमारे राज्य के लिए मंगा लेंगे, ये तो कब बनाएंगे, बाहर से मंगाते नहीं है। और उसके बारे में अभी ये मंच नहीं है, वरना उसी पे भी मैं एक घंटा बोल सकता हूं, जरूरी नहीं है इसलिए नहीं कहना। मगर उसी समय हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए उनको वैक्सीन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और पूरी दुनिया के सामने एक के बजाय दो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बना दी। तो उसमें से हम आत्मनिर्भर तो हुए, हमारी जाने तो बची, मगर भारत का आत्मनिर्भर का और भारत का समृद्ध होने का दूसरा अर्थ क्या है, ये हम सबको बहुत संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। वो वैक्सीन तो दुनिया वालों के पास थी, अमेरिका के पास थी, इंग्लैंड के पास थी, विकसित राष्ट्रों के पास वैक्सीनें थी। बड़ी मानव जात के लिए सोचने वाला सवाल है, किसी देश को उन्होंने दी नहीं है। और मैं आज आप सबके संज्ञान में बड़ी गंभीरता से लाना चाहता हूं कि उन राष्ट्र वालों ने उनके देशवासियों को भी मुफ्त में नहीं दिया है। ये सोच का सवाल है। यहां सोच है, जो हम कल्याण की बात करते हैं, हम सुख की बात करते हैं, हम आनंद की बात करते हैं, तब हमारा अर्थ क्या होता है और पश्चिम का अर्थ क्या होता है, इसमें यह बड़ा भेद है। उनके पास था, उन्होंने किसी को नहीं दिया। ये भारत और भारत के नागरिक कह सकते हैं कि हमने देशवासियों को तो मुफ्त में दिया ही, विदेश के 100 देशों को मुफ्त में दिया। हम चाहते तो उसके पैसे बड़े अच्छी तरह से ऐंठ सकते थे, वो नहीं किया। ये भारत नहीं करता है, ये हमारी संस्कृति है। जो आज आप संस्कृति की पर बहुत बल दे रहे हैं, तो उस गौरवशाली परंपरा के हम वाहक हैं। ये हम हमारे सबके संज्ञान में रहे। और सनातन कृषि के बारे में, सनातन और कृषि, सनातन एक अलग बात भी है और सनातन कृषि, ये दोनों को जोड़ के ही हमें तो बात करनी है, वरना सनातन पे भी एक लड़ाई चल रही है, उसी में हमें अभी यहां नहीं जाना है। सो मैं रोकते रोकते अपने को सेंटर में रखूंगा, कोशिश करूंगा। तो ये सनातन कृषि, हमें ये सोच के देशवासियों को, सभी को, और खास करके किसानों को, इस देश के किसानों को, ये बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि कृषि ये हमारा व्यवसाय नहीं है, ये हमारे अर्थ उपार्जन का साधन नहीं है। उससे, उसके जरिए आपका जीवन यापन होता है, वो ठीक बात है, अच्छी बात है, मगर ये हमारा फर्ज है, ये हमें फर्ज में मिला है। आप सबको पता होना चाहिए किसानों का टाइटल क्या है, जैसे आप भी पूछते थे, मैंने भी सोच रखा है एक दो सवाल मैं भी पूछूंगा, किसानों का टाइटल क्या है इस देश में। जगत का तात बोला जाता है, अन्नदाता तो अभी हम बोलना शुरू किया, जगत का तात का टाइटल है उसके पास, उसको, किसान को जगत का तात बोला जाता है। तात का मतलब क्या होता है, आप जगत के पिता होने का टाइटल आपको मिला है। समाजों को पहले टाइटल दिए थे, समाज ने दिया हुआ है, किसी ने अर्ज किया हुआ नहीं है, समाज उसको जगत का तात कहते हैं। आपने व्यापारियों में बड़े जो करने वाले लोग थे उसको टाइटल दिया था महाजन, उसको महाजन बोला जाता था। और हमारे नीति शतक जो कहने वाले लोग थे, जो हमें पंचतंत्र जैसे जो सूत्र देके गए हैं, उन्होंने कहा है कि जिस गांव में एक महाजन न हो उस गांव में रात्रि निवास मत करना, ऐसा हमको कह के गए हैं। तो महाजन का भी टाइटल था उनके पास, वो महाजन था, उसकी जिम्मेवारी रहती थी गांव में कुछ भी आपदा आ जाए तो सामने से प्रोएक्टिव होकर उसका जिम्मा लेना, उसका समाधान करना, वो उसकी जिम्मेवारियां होती थी, इसीलिए उनका ये टाइटल रहता था। क्षत्रियों को हम बापू कहते हैं, ये टाइटल दिया हुआ है। क्यों? कि कभी किसी के ऊपर कुछ संकट आ जाता है तो मरने के लिए स्वयं तैयार हो जाना था, तो ये सारे टाइटल समाज की ओर से जगत के तात का जो आपका टाइटल है, क्या आप सिर्फ अर्थ उपार्जन की उसी वेदी पर उसको बलि चढ़ा दोगे और आप इसको करना पसंद नहीं करोगे? और एक बात सोच के चलना, कुछ भी चीजें कारखाने में बनेगी, जो भी चाहोगे वो बनेगी, जो चाहोगे वो आज मैन्युफैक्चर हो सकता है, आज नहीं भी होता होगा कल होने लगेगा, जो भी चाहोगे वो कारखाने में बन जाएगा, मगर गेहूं चावल और दाल ये कारखाने में बनने वाला नहीं है, ये तो खेत में ही बनाना है, खेत में से ही खाना है। तो ये इतनी बड़ी बात जो है उसी को अब हम कह रहे हैं कि भैया खेती में क्या रखा है और कुछ करो, तो ये और कुछ करने वाली बात नहीं है, ये जब तक मानव जात है तब तक चलाने का हमारा जिम्मा है, ये कुदरत ने हमको दिया है। कुछ चीजों की ओर हम देखते नहीं है, इसीलिए देखो ये हमारे सुथार थे, हमारे लुहार थे, हमारे स्वर्णकार थे, हमारे कपड़े बुनने वाले लोग थे। अब आप कोई हिस्ट्री में या कहीं पे लिखा है कि इनकी कॉलेजें थी पहले? आप दसवीं पीढ़ी का भी सुथार आपको मिलेगा और वो उन्होंने जो दरवाजे बनाए हैं वो आज के टेक्नोक्रेट भी नहीं बना सकते। वो कहां पढ़े थे? उनको सर्टिफिकेट किसने दिया था? उस समय जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई है वो आज प्लान भी हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्लान भी हम नहीं सोच सकते हैं। आपके यहां के पुराने किले आप देख लो, आप तो राजस्थान में, आप देख लो किसी भी चीज, कपड़ा जो हमारा मलमल बनता था उस जमाने में, लोग बता रहे हैं वो तो हमने देखा नहीं है कि वीटी में से वो ताका निकल जाता था, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब बताओ वो कौन से टेक्सटाइल डिग्री लेकर आए थे? कोई नहीं था, फिर भी इतने पारंगत थे कि आज के टेक्नोक्रेट से भी वो ज्यादा बुद्धिमान थे, ये मानना ही पड़ेगा। तो वो कहां से आ रहा था? तो मैं ही तो जो समझा हूं सुना हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भगवान ने ऐसे सृष्टि तो बना दी, बाद में इसको पता चला कि ये तो ठीक नहीं चल रहा है, तो सारा गड़बड़ वाला मसला है। तब उस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को उन्होंने आदेश दिया और उन्होंने आकर ये समाज बनाए कि ये नाई समाज है। और अभी तो विश्वकर्मा का एक योजना भारत सरकार ने बना दी, जो भी ऐसे लोग थे जो अपने हाथ में किसी टूल्स को लेकर अपना व्यवसाय कर रहे थे उन सभी को विश्वकर्मा कहा जाता है, आज सभी लोग वो विश्वकर्मा समाज से जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा तभी ये सृष्टि खूबसूरत बनी। अगर समझ लो कभी नाई नहीं होता तो हम कैसे लगते यहां बैठे? एक भी कैमरा वाले सब चले जाते अपने आप के, यहां कोई काम ही नहीं है, किसी का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा, कैसे लगते आप सोच लो एक मिनट के लिए ही। तो ये सारी उनकी सृष्टि को सुंदर बनाने का काम जैसे विश्वकर्मा समाज के दायित्व के रूप में हमारे संस्कृति का हिस्सा बना, ऐसे ही इस समाज का भोजन कराने का जिम्मा वो किसानों के जिम्मे में डाला हुआ है और उसी लिए वो करते रहे। मैं आपको साधार बताना चाहूंगा, अभी तो दुनिया चल रही है डॉलर पर आवर पे, अब तो पूरे डे का भी नहीं चल रहा है, आवर पे डॉलर चल रहा है, एक घंटे का इतना, पांच घंटे का इतना, पर डे का इतना, पर मंथ का इतना, और पैकेज आते हैं हर साल का वो लाखों में होता है। तो ये हिसाब किताब से ही सारा काम चल रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में कहीं पे नहीं है कि जिसमें एक सप्ताह काम करो और एक सप्ताह के बाद आपको पैसा न मिले तो दोबारा कोई काम करे, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है दुनिया में, कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपने किसानी देख लो, पूरा परिवार 12 महीना काम करे, पूरे परिश्रम करके अपनी जोत को लगावे, बारिश हो जाए बोनी लगा दे, बीज कीमती बीज डाल दे, आखिर में दो बारिश नहीं आई, ये साल गया, खेत में से कुछ आया ही नहीं, ये साल का हिसाब क्या हो गया, जीरो। ऐसे कैसे, कितने जीरो के हिसाब वाले लोग यहां, जो कोई पुराने किसान बैठे होंगे तो उसकी डायरी में नोंधे भी होंगे, तीन चार दुकाल का तो अकाल का मैं साक्षी हूं। हमारे यहां 74, 76 ये तीन श्रृंखला में एक कंटिन्यूटी में अकाल पड़े थे, हमने ऐसे इतने देखे हैं, हम पुरखों ने तो बहुत देखे होंगे। और एक छोटे से कारण से भी बिगड़ जाता था पूरे का पूरा, पूरा अच्छा होता टीड आ गया, अभी आ गया था दो तीन साल पहले, और पूरा सफाया कर दिया, कुछ ना कुछ हो जाता है। और पूरे साल की कमाई और पूरे परिवार की, वो भी एक आदमी की नहीं, पूरे परिवार की मेहनत एक साल की जीरो होकर, और फिर अखात्री जाती है, अक्षय तृतीया आप बोलते होंगे, ये फिर बेल को बुलाएंगे, फिर इसके कपाल पे तिलक करेंगे, फिर इसके मुंह में गुड़ डालते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं। पिछले साल का याद नहीं करते कि कुछ नहीं हुआ था, तो ऐसा किसान अभी तक हमने नहीं देखा है कि पिछले साल कुछ नहीं हुआ है, चलो छोड़ो इसको, मारो गोली और कोई काम करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जगत के तात का टाइटल आपके पास है, कुछ हो या कुछ न हो फिर भी करते रहो, और करते रहे हैं, इसीलिए ये सनातन कृषि है और उसको सनातन मान के ही हमें चलाना होगा। अब इसमें नए अध्याय जो अभी अभी जुड़ रहे हैं, और नया समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन भी होता रहा, बदलाव भी होते रहे, बहुत बदलाव अब तो हो गया। और प्रकृति के साथ से हम जब जितना जितना दूर चले गए, खेती में कई विषय है, उन सभी को यहां जोड़ना ठीक भी नहीं है, मगर एक बात मैं बता दूं, और ये खास करके प्राकृतिक खेती की ओर हम जब चल पड़े हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत बल दे रहे हैं, हमारे गुजरात के सम्माननीय राज्यपाल महोदय तो उसी पर ही अपना पूरा जोक लगाए, उसको पूरी ताकत से इनके पीछे लगे हुए हैं, ऐसे अवसर पर प्राकृतिक खेती की ओर हमें लौटना होगा, तो सबसे पहले हमें पशुपालन की ओर लौटना होगा। ये गाय के पालन के बगैर प्राकृतिक खेती का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो पहले हमें गाय माता की ओर जाना पड़ेगा। और मेरा ये बहुत ही नम्र मत है कि हमारे देश में जब से ये शुरू होगा, हम तो अभी श्री कृष्ण जी के नाम पे हैं गाय माता जी, और उन्होंने चराई है, तो वहीं से कम मान ले तो भी गाय के बाद कृषि आई होगी, गाय के बाद हमारे में कृषि में बेल आया होगा, और उसी से फिर हमारी प्राकृतिक खेती का प्रारंभ हुआ होगा, तो फिर से हमें उसी दिशा में जाना होगा। केमिकल फर्टिलाइजर का एक युग आ गया, और उसी समय की मांग भी थी, आप सबके संज्ञान के लिए ही सिर्फ बता रहा हूं कि जमीन हमारे पास ज्यादा थी, आबादी कम थी, हम 50 करोड़ थे शास्त्री जी के कालखंड में, और जमीन ये अभी जितनी हमने यूटिलाइज कर ली है उससे ज्यादा थी, और थोड़ी ज्यादा उपजाऊ भी थी, उसके बावजूद भी उस समय के लोगों का पेट पालने के लिए हमें विदेश से अनाज मंगाना पड़ता था, ये भी सत्य है, ये भी फैक्ट है। अमेरिका से वो गेहूं आते थे जो वहां के पशु नहीं खाते थे, वो हमको भेजते थे, उसी पर शास्त्री जी ने उस समय कहा था कि हम 50 करोड़ की आबादी के देश हैं, हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, हम एक दिन उपवास करेंगे तो कितना अनाज बचा जाएगा, और उन्होंने हर मंडे को उपवास करने का ऐलान दिया था। बड़े लोगों को याद होगा कि उस समय लोग सोमवार को उपवास करते थे, और वो बात तो ठीक है, मगर होटल में जहां पैसा देकर भोजन करने लोग जाते थे, वहां होटल वाले भी सोमवार को राइस नहीं देते थे, फुल डिश में, फुल डिश के पैसे दिए होते थे, वो राइस नहीं देते थे, और जब ग्राहक ऊंचे आवाज में उनसे पूछता था कि राइस लाओ, तो वो बोलता था कि आज मंडे हैं और पीएम साहब की अपील है, इसलिए हम आज राइस नहीं बनाते हैं, तो किसी ने झगड़ा नहीं किया था। ये देश है, ये देश है, ये हमारे स्मरण में होना चाहिए। और आज हम 140 करोड़ हैं, तीन गुने हो गए हैं, और फिर भी अन्न भंडार भरे हैं, और 20, 25, 30 देश हमारे अनाज पे चल रहे हैं। तो ये किसानों की कमाल है, ये किसानों की पसीने की कमाल है, कृषि वैज्ञानिकों की कमाल है, और हमारे देश के कृषि नीतियों की कमाल है। इन तीनों चीजों ने मिलाकर इस मंजिल पर अब हम पहुंचे हैं। मगर अभी के मंजिल से हमें जहां आगे जाना है, ये प्राकृतिक खेती का रास्ता है, और इसीलिए हमें गोपालन की ओर जाना पड़ेगा, प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा। और हम प्रकृति के साथ ही थे, हमारा बिछड़ा हो गया है। थोड़ा स्मरण कराओगे किसानों को और ग्रामवासियों को, तो उसके स्मरण में सारी चीजें आ जाती है। भाई साहब ने गीत बनाया कि हमारी बेटियां जब विदा होती थी तो ऐसे नीम की डाली मत काटना, ऐसे भाव वाली गीत गाती थी। हमारे गुजराती में बहुत अच्छे गीत हैं इसके, आवी रूड़ी आंबलियानी डाल मेली ने कोयल क्या गई थी। मने तो स्वर हारो नहीं आवड़तो, पर हमारे समूह में बहनों गाती हो तो सांभळवा माटे उभू रही जवू पड़े। दादा ने आंगण आंबलो, आंबलो घोर गंभीर जो, दादा अमे एकज पान जो तोड़ियू तो दादाए दीधा परदेश जो। सुंदर मजानी भावक गीतनी कथा एवी सरस छे कि दादानी आंगळी पकड़ी ने रोज दीकरी आंबा पाहेथी निकले, एटले दादा एने एक आंबानुं पांदड़ू तोड़ीने हाथ मारम्मां आपे। ए तो रोजनो एनो क्रम। एक दिवस दीकरी छे ने एने माटेनो शब्द प्रयोग छे गुजरातीमां, गुजराती में प्रयोग है, हाँ गुजराती में प्रयोग है, मैं बात गुजराती बताना चाहता हूं। गुजराती में प्रयोग है कि दीकरी दिन को नहीं बढ़े उतनी रात में बढ़ती है, और इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ती है। सो एक दिन वो बच्ची ने आम के नीचे से गुजरते समय वो आम का पत्ता खुद जंप मार के तोड़ लिया, जो उसको रोज दादा देता था। तो दादा ने सोच लिया कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। सो बेटी ने उसको गीत में सुनाया कि हमने एक पान आपके आम का तोड़ा तो आपने हमको विदेश भेज दिया, ऐसे दादू होते हैं क्या? ऐसे लाड प्यार भरे गीत हमारे कल्चरल में बहुत जुड़ा हुआ था। सारे गीत हमारे बौनी के समय गीत गाए जाते थे, हमारे सारे उत्सव जो होते हैं थे वो सारे कृषि के साथ ही जुड़े हुए होते थे, और उसी के उपलक्ष्य में ही ये इस देश में हमारा कारोबार चलता था। हमारे इस प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने में, और मैंने आज आपके तपोवन के खेत के और आपके मॉडल को देखा, वहां के जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत बारीकी से समझाया भी है। मैंने उसको एक मॉडल मेरी निगरानी में कहीं मैं देख सकूं वो बनाने का भी कहा है, वो अलग बात है। मैं ये इस मंच से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ऐसे मॉडल हमारे ICAR ने भी बनाए हैं, उसके साथ परामर्श करके हमारे मॉडल और इसके मॉडल में क्या समानताएं हैं, क्या विविधताएं हैं, और क्या इवोल्यूशन का डिफरेंस है, उसका एक जानकारी हमें लेना चाहिए, और उसमें ISR वालों को साथ रख के ये बात करनी चाहिए। और इसमें अगर मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं भी उसमें आपको उपकृत बनूंगा। दूसरा मेरा ये भी कहना था कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहने से 100 बार कहने से लोग नहीं करेंगे, मगर वो देखने से जल्दी से करेंगे। सो उसका प्रत्यक्षकरण कैसे ज्यादा बढ़ सके, तो कृषि के क्षेत्र में हमारे देश में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है कृषि विज्ञान केंद्रों की। भारत सरकार के ICAR विभाग के द्वारा वो संचालित होते हैं, और देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि वैज्ञानिक केंद्र अवश्यंभावी है, सभी जगह पे है। और देश के कृषि क्षेत्र में जो भी नवाचार होता है वो वहां के कृषि केंद्र में प्रदर्शन के रूप में किए जाते हैं। कोई नया बीज आता है, कोई नई सिस्टम आती है, कोई नया औजार आता है, तो ये सारे नवाचार वहां कृषि केंद्रों पे प्रदर्शन करने की व्यवस्थाएं हैं। तो हमारी ओर से ये दिव्य जो शाश्वत खेती का प्रयोग है, ये थोड़ा आध्यात्मिक और ढलने वाला है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, तो अवश्यंभावी उसके खिलाफ सवाल होंगे। मगर उसी मॉडल को भी कहीं कहीं प्रदर्शित करने का प्रयास उसी कृषि केंद्रों में भी करना चाहिए, और उसी के लिए हम राज्य सरकारों के साथ और जिला वहीवटी तंत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते हैं, और उसी में करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उसकी व्यापकता थोड़ी और बढ़ सकती है। ये हमारे देश की आध्यात्मिकता के ऊपर अब दुनिया की राय बदल रही है, हमारे देशवासियों की राय भी बदल रही है। जैसे कि योग, ये पहले ऐसे ही माना जाता था कि कोई साधु संत या योगियों के काम की चीज होगी, मगर जब से मोदी जी ने इनको विश्व के मंच पर रखा और विश्व ने इसको स्वीकृति दी और योग दिन, विश्व योग दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, आज 150-200 देशों में योग को बड़ी लगाव से लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके संज्ञान में आ रहा है। कई चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारे देश की आध्यात्मिकता को विश्व के मंच पर मान्यता देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ने का प्रारंभ है, ऐसा भी मैं कह सकता हूं, इसमें कोई राय नहीं है। तो इसी को किसानी में, हमारा तो ये कृषि के साथ हम जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, हमारे आध्यात्मिकता के बगैर हमारे किसी भी व्यवसाय नहीं होता था, किसी भी व्यवसाय नहीं होता था। हम जब अपना हिसाब किताब लगते थे तो शुरुआत कहां से करते थे, श्री सभा पहले लिखते थे चोपड़ा में। अभी ये तो 30 मार्च वाला आ गया इसलिए, वरना हमारा चोपड़ा पूजन तो धनतेरस के दिन ही होता था। हमारा चोपड़ा पूजन कब होता था, धनतेरस के दिन होता था। धनतेरस के दिन क्यों होता था, उस दिन लक्ष्मी पूजा होती थी। तो ये सारी संस्कृति के साथ ही सारे व्यवसाय हमारे इसी के साथ ही जुड़े रहते थे। हमारी शस्त्र पूजा कब करते थे हम, दशहरा के दिन करते थे। वो हमारे सारे किसी भी क्रियाकलाप को आप ले लो, वो हमारी आध्यात्मिकता के साथ ही इस देश जुड़ा था। ये देश ही ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति, जिसने कहा बड़ा स्वाभाविक और सही कहा है, ये देश ऋषियों का है, ये देश कृषियों का है, और इस देश का कल्चर क्या है, तो एक ही लिटी में जवाब है कि इस देश का कल्चर ही एग्रीकल्चर है और यही हमारा कल्चर है। तो इसी के कारण इसी में आध्यात्मिकता का अगर प्रभाव जाता है तो ये कोई, इसी समय मैं तो मानता हूं कि इसके बारे में भी वैज्ञानिकों को भी अब सोचना होगा, अब वैज्ञानिकों को भी इस दिशा में आगे आना होगा और इसके प्रयोग करने होंगे कि भी इसका क्या प्रभाव। हमारे जो मंत्र है, ये मंत्र कोई ऐसे ही बने ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कई ऋषि मुनियों ने, जिसको हमारे पास से चंदा नहीं लेना था, उन्होंने बनाए हैं, तो ये मानव कल्याण के लिए बनी हुई चीजें हैं। उसी के तत्वावधान में आध्यात्मिकता से, पॉजिटिविटी से पशुओं पर असर आती है, प्राणियों पर असर आती है, मानवों पर असर आती है, तो पेड़ों पे, वृक्षों पे, पौधों पे क्यों नहीं आती होगी, अवश्यम भाव आती होगी, ये मेरा दृढ़ मानना है। मैं इसको किसी वो नहीं मानता हूं जिसको बुलाते हैं ना लोग, मानते हैं कई कई चीजें बोलते हैं, धर्म का नाम आते ही, अध्यात्म का नाम आते ही कई लोग ऐसे हैं कि इनके नाक के टीचके यूं ही चढ़ जाते हैं, मगर हमें इसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देश ऋषियों का है, इसीलिए इस देश में आध्यात्मिकता का प्रभाव है, था और रहेगा, इसमें से हम कभी भी बाहर नहीं जा सकते। और मैं तो ये मानता हूं यही विश्व के लिए भारत इसीलिए ही बना है, ये देवताओं ने और परमात्मा ने इस भूमि को इसीलिए ही बनाया है कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब यहां से आवाज उठेगी, ये गीता का वचन है। तो अभी इसी कालखंड में जो आवश्यकता है उसी को आगे बढ़ाने का यहां से प्रयास हो रहा है। प्राकृतिक खेती, मैं तो जब बैठा था तो बात हमें बताई गई थी कि हमारे अहमदाबाद वाले भाई गोपाल जी, ये भी इसी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, अभी वो 300 रुपया लीटर दूध बेच रहा है गाय का, और घी 5000 रुपया किलो बेच रहे हैं। बताओ कौन सी दिक्कत है ये व्यवसाय करने में, कहां मिल रहा है, ब्रांड है तो अभी लोगों को चाहिए, लोग खाना चाहते हैं, मिलता नहीं है, तो वो पशुपालन ऐसा बहुत ही, और कृष्ण महाराज ने जो किया होगा वो कोई ऐसा काम हो थोड़ा ही होगा कि जो करने से कुछ नुकसान हो, तो वो तो करते ही नहीं। तो वो कृष्ण महाराज ने जो संदेश दिया है उसी के आधार पर फिर से हम गो आधारित प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी सुविधाएं देने का भी प्रयास किया है। अभी हमारी एक बात हो रही थी बैठे थे तब, कि भारत सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, और उसको गांव तक पहुंचाना हो, तो बीच में कुछ गैप्स रह जाते हैं, उनको पता नहीं होता कैसे लिया जाता है। अभी वृक्षारोपण, अभी की सीजन आएगी, बारिश की सीजन आएगी, सभी संस्थाएं लगेगी हमें वृक्षारोपण करना है। अभी भारत सरकार की योजना है, अगर किसान को वृक्ष लगाना है तो उसकी मेड़ पे पेड़ लगाने की ग्रांट भारत सरकार की ओर से आती है, लगेगा भी और उसको खर्चा भी भारत सरकार की ओर से मिल सकता है। ऐसी योजनाएं हैं, इनको जोड़ने के लिए आज एक सरपंच जो जोहाता जाहोता के सरपंच थे, वो बड़ी उत्सुकता से अपने गांव में बड़ी प्रोएक्टिव होकर सभी योजनाओं का बेनिफिट दिलवा रहे हैं। ऐसे सरपंचों को इकट्ठा करके इन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का प्रकल्प भी आपकी संस्था के द्वारा होगा, तो ये जन कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी काम होगा, और मैं उस काम में भी आपको सफलता मिले ऐसी कामना करता हूं। आप लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ही सुंदर माननीय वक्तव्य हम सभी के सामने आदरणीय रूपाला जी ने रखा। हम एक बार तालियों से, हृदय से, भावनात्मक भाषा में आपका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, धन्यवाद है। हम सब के बीच में एक सम्माननीय प्रतिभा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा उपस्थित है, आदरणीय भ्राता डॉक्टर आनंद कुमार सिंह। आप वाइस चांसलर चंद्रशेखर आजाद कृषि यूनिवर्सिटी कानपुर से हैं। एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा आपके अंदर समाई हुई है। कृषि क्षेत्र में आपने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। विश्व सब्जी केंद्र ताइवान में आप बोर्ड ऑफ सदस्य के रूप में सेवा देने वाले भारत के प्रथम भारतीय नागरिक हैं। आपने जापान सरकार से मोम्बुशो पुरस्कार प्राप्त किया है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों का भी आपने नेतृत्व किया है। आपको अनेक अवार्ड्स और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज हम भी आपको सम्मान आमंत्रित कर रहे हैं, अपने शुभ विचार इस सभा के सामने प्रस्तुत करें डॉक्टर आनंद कुमार सिंह।
ओम शांति। आज 22 मई को राजयोग एजुकेशन एवं रिसर्च फाउंडेशन तथा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं अपने को पाकर हर्षित महसूस कर रहा हूं। मैं इस परिसर में कभी नहीं आया हूं मैं, और एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए कहा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के लिए भी, आने वाले दशकों के लिए, कई दशकों के लिए, देश के लिए नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, संस्कृति के लिए, उन देशों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि विरासत में विश्वास रखते हैं, प्राकृतिक खेती में विश्वास रखते हैं, एक स्वस्थ उत्पाद के रूप में व्यावसायिकता में विश्वास रखते हैं। हिंदुस्तान एक सनातनी देश रहा है, एक प्राकृतिक खेती करने वाला देश रहा है। ऐसे विषय पर, ऐसे देश में, ऐसी जगह पे, ऐसे अनुकरणीय जगह पर सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज कैसे हासिल किया जाए, या तो मैं ये कहूंगा कैसे पुनः हासिल किया जाए, पे जो आयोजन किया गया है, मैं इसमें शामिल होकर अपने को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूं। और इस अवसर पर बड़ा ही समृद्ध मंच रहा है। आदरणीय कृषि मंत्री जी रहे हैं, हमें इनके साथ काम करने का अवसर भी मिला है और अपने अचूक विचारधारा के लिए जाने जाते थे। बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते थे हमेशा, जो कि बहुत ही अनुकरणीय रहता था। कभी कभी शुरुआत में हम लोगों को लगा कि विज्ञान से थोड़ा दूर तो नहीं हो रहे महोदय, लेकिन जब उसको जोड़ते थे ग्रामीण परिवेश कैसे किसान और प्राकृतिक खेती के बारे में जोड़ते थे, तो हम लोगों को लगता था नहीं, इनकी बातों में बहुत ही दम है, जितना जोश है उससे भी ज्यादा दम है। आज आप यहां आए महोदय, एक बार पुनः आपसे मिलकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है और आपके मार्गदर्शन में हम लोग काम किए हैं और देश की खेती को फायदा हुआ है। आज इस अवसर पर हमारे साथ ब्रह्म कुमारी बहने हैं और राजू भाई जी उपाध्यक्ष कृषि एवं ग्राम विकास विभाग माउंट आबू, बद्र विशाल भाई जो कि कृषि में इनकी विशेषज्ञता है, वह भी आज अपनी बात को रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखे हैं, ढेर सारे उदाहरण दिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। ब्रह्म कुमारी सरला दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रभा बहन जी, ब्रह्म कुमारी सुनंदा बहन जी, ब्रह्म कुमार सुमन भाई, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हैं। इस अवसर पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है, मेरे पास 10 मिनट का समय है, मैं कोशिश करता हूं कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं हम लोग आजाद हुए और आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं एक गांव से आता हूं, मैं जानता हूं उस समय खेती कैसे होती थी, आज कैसे खेती हो रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमने अपने गांव में देखा है, गांव के गोबर को अलग किया जाता था, भैंस के और बैल के गोबर को अलग रखा जाता था, गाय के गोबर से खाद बना करके उन फसलों में दिया जाता था। पता नहीं देश के अन्य भागों में है या नहीं, मैं ICR में करीब 25 से 30 वर्ष तक काम किया, कहीं देखा नहीं। ढेर सारे गांव में जाने का अवसर मिला। गाय गोबर से बनी खाद को उन फसलों में दिया जाता था जो कि पवित्र होती थी, खासतौर से जैसे आलू है जो जमीन में होती है, मूली है, गाजर है, ऐसी फसलें जो जमीन के अंदर बनती हैं, उसको धो करके या पका करके सब्जी के रूप में या सलाद के रूप में खाई जाती थी। गाय के गोबर का गणेश बनता था पूजा करने के लिए, ऐसी महत्ता थी। धीरे धीरे ये लुप्त हो रही है, अब पूजा हो रही है लेकिन ऐसी चीजें अब नहीं है, गांव में भी नहीं है, शहरों में तो और भी नहीं है। खेती की महत्ता थी, हम लोगों ने अपनी परंपराओं में विश्वास किया, खेती की परंपराओं में विश्वास किया, जहां पर कि प्राकृतिक संसाधनों, जिस एरिया में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते थे, जो भी हमारे पास पारस्परिक ज्ञान था, एक साथ काम करने की क्षमता थी, एक संस्कृति थी, वह आज नहीं है। भले ही हम आजादी के समय 50 मिलियन टन करीब 5 करोड़ टन अनाज पैदा करते थे, आज भले ही आप 332 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं, 365 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर फल सब्जी अनाज मसालेदार फसलें पैदा कर रहे हैं, इतना बड़ा दुग्ध का उत्पादन बढ़ा है, मछली का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हमने हासिल क्या किया? अपनी जमीन को हमने बर्बाद किया और खेती के जो मुख्य स्तंभ होते हैं, मिट्टी, आकाश, पानी, इनको बर्बाद किया। आज क्या हो रहा है? समुद्र आतंकित है, हवाएं रौद्र रूप ले चुकी हैं, मनुष्य परेशान है, सब्जियों से फलों से सुगंध गायब है, फूलों से सुगंध गायब है। ऐसे फूलों की खेती हम ओपन में, चाहे पॉली हाउसेस में, चाहे ग्रीन हाउसेस में कर रहे हैं, जिनमें सुगंध नहीं है, फिर भी उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, व्यावसायिकता चरम सीमा पर है। कब तक? वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, वातावरण में रौद्रता बढ़ रही है। आज हम 146 करोड़ हैं, भारत सरकार की एक रिपोर्ट है जिसमें एक उसके रचयिता नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र जी भी हैं, उन्होंने लिखा है कि 2050 तक हमें 400 मिलियन टन अनाज चाहिए। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 10 लाख, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। इतना अनाज हमें चाहिए और आज हम 332 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं। 2025 चल रहा है, 2047 में हम लोग 100 साल पूरा करेंगे, 2025 साल हमारे पास और है। 332 मिलियन टन आप पैदा कर रहे हैं, आपको कितना और चाहिए? 70 मिलियन टन, सिर्फ 70 मिलियन टन अगले 25 वर्षों में। 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष भी नहीं है, लेकिन देखने वाली चीज ये है कि जितना हम कृषि में उत्पादन करते हैं, कोई भी फसल हो, अनाजों में खासतौर से, उसमें 18 से 20% अनाज हमारा नष्ट होता है। आप इस चीज को ध्यान दें कि 1 किलो गेहूं पैदा करने का खर्चा 11 से 12 रुपए होता है। आप सिर्फ गणित करिए इसका, कितना बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो फसल होती है, बीमारियों से और कीड़ों से करीब 15 से 35% तक का नुकसान होता है। खाली इस क्षति का हम 1/3 भी अगर हम बचा लेते हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूं, मैं जानता हूं देश में भुखमरी कभी नहीं आएगी, चाहे क्लाइमेट चेंज जितना भी रौद्र रूप ले ले, कभी नहीं होगा, हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता। हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास है, विश्वास हमें जो हिंदुस्तान ने किया है पिछले 70 सालों में। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए हैं लोग उनको नहीं पता होगा, शायद हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, शोध करते हैं, इसलिए ऐसे आंकड़ों से हम लोग चिरपरिचित हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं, शोध में भी, योजना के रूप में भी बताते हैं सरकार को। 2013-14 से लेकर के अभी तक कृषि की ग्रोथ 4% रही है, उसके पहले के 10 वर्षों में 4% ग्रोथ कभी भी नहीं रही। रमेश चंद जी हैं नीति आयोग में, जो कृषि के बारे में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होना है तो बिना कृषि के विकास के संभव है ही नहीं। दूसरी बात, अगर कृषि को 4% से कम की विकास दर रहती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हमारे पास 3-4 चीजें ऐसी हैं जिससे कि विश्वास जगता है। एक तो ये है कि देश में किसानों का विश्वास तकनीक में बढ़ा है, देशी तकनीक में बढ़ा है। इसका प्रयोग अगर हम अपनी संस्कृति और विरासत के साथ पिरो करके चलते हैं तो कोई भी शक्ति हमें 4% की ग्रोथ से रोक सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने नई नई प्रजातियां दी, कृषि विज्ञान के माध्यम से उन प्रजातियों का विकास किया गया, देश के हर छोर में पहुंचाया गया, फिर भी मैं जानता हूं कि कई इलाकों में, कई जिलों में जो बीज या उत्पादन की उत्कृष्ट तकनीकियां हैं वो अभी नहीं पहुंच पाई हैं। आप यही समझ लें कि देश में हर साल गेहूं की ढेर सारी प्रजातियां विकसित की जाती हैं। इसका संस्कृति से क्या संबंध है मैं बोलूंगा उसके बारे में, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ढेर सारी गेहूं की, धान की, सब्जियों की, जितनी भी फसलों की खेती हिंदुस्तान में होती है सबकी प्रजातियां विकसित की जाती हैं। धान और गेहूं का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारी ये मुख्य फसल है खाने की। मुश्किल से 35 से 40% ही वैरायटी का रिप्लेसमेंट होता है, ये प्रजातियां खेतों तक पहुंच पाती हैं, सिर्फ 35%। एक आंकड़ा है जो कि डेटा पे आधारित है, वो ये कहता है कि अगर ये 35% जो सीड का रिप्लेसमेंट है, वैरायटी का रिप्लेसमेंट है, अगर किसानों को 50% पहुंच जाए, आप इतना अनाज पैदा कर देंगे जो पूरे यूरोप को हिंदुस्तान के अलावा खिला सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। ये शक्ति है, सिर्फ मैं गेहूं की बात कर रहा हूं, धान है। दुर्भाग्य की बात यह है महोदय, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि जो हम 332 मिलियन टन अनाज की बात करते हैं उसमें सिर्फ 4 फसलें ऐसी हैं जिनका योगदान 92% का शेयर है, जो कि एक चिंता का विषय है। 139 मिलियन टन चावल है, 115 मिलियन टन गेहूं है, 42 मिलियन टन मक्का है और 17 मिलियन टन मिलेट्स हैं। ये सिर्फ चार फसलें ऐसी हैं जिनका योगदान हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में 92% है। यह एक चिंता का विषय है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने देखिए यूनाइटेड नेशंस में ले गए मिलेट्स को। मिलेट्स एक ग्रुप है फसलों का, एक समूह है फसलों का। 8 मिलेट की फसलें होती हैं, हिंदुस्तान में खाई जाती थी, परंपरा से जुड़ा हुआ था, संस्कृति से जुड़ा हुआ था, खाने की परंपरा, ढेर सारी अन्य परंपराओं से, विविधताओं से जुड़ा हुआ था। ये किसानों के यहां पहुंचा है और जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी कर रहे हैं जहां पहले नहीं होती थी, उनकी आय, उनका ज्वार, बाजरा, मिलेट, सावा, कोदो, जिनकी भी खेती करते हैं उसकी कीमत धान और गेहूं से बहुत ज्यादा मिल रही है। और वो उत्पाद जिसमें कि रसायन मुक्त है, रसायन युक्त नहीं है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा मिल रही है। देश में ही नहीं, हम वैज्ञानिक हैं, कई देशों के वैज्ञानिकों से हम लोगों की बातचीत होती रहती है। कई बार मौका भी मिला, मुझे मिला है वहां जाने का, उनके साथ बात करने का, देखने का, पढ़ा भी हूं मैं कई बार, 2-3 बार वहां पे। वो कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल जो खेत, जिन फसलों की खेती हिंदुस्तान में होती है, उसकी पोषणता बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से रसायनों का प्रयोग हुआ है उसमें छीणता आई है, कमी आई है। यहां पे जरूरत है उन पद्धतियों का जिनमें हम पहले विश्वास करते थे, सांस्कृतिक तरीके से कैसे हम सनातन कृषि का प्रयोग जो करते रहे हैं पहले, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले या उसके पहले भी करते आए हैं, उनको इकट्ठा किया गया है और भी इकट्ठा करने की जरूरत है। हर संस्कृति में, देश के कोने कोने में, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, चाहे गांव हो, हर जगह पे उनकी संस्कृतियों में जिस प्रकार की भी खेती होती रही है, ऐसे नॉलेज जो ट्रेडिशनल विजडम कहा जाता है वो वहां पे उपलब्ध है। कुछ आंकड़े और कुछ डेटा, कुछ जो पुरानी पुस्तकें हमारी हैं, धरोहर है, उसमें से निकाल करके नई नई पुस्तकें भी आ रही हैं। ये सूचनाओं को कृषि विश्वविद्यालय में लाया जा रहा है, हम लोग भी उसको बच्चों के सामने पेश करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, गोबर की खाद के बारे में, पानी के बारे में, कैसे पानी का हर बूंद महत्वपूर्ण है। हम पूजा करते हैं उनकी, वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। पहले जब आदमी बीमार होता था तब फल खाते थे, आज देखिए फलों की महत्ता बढ़ी है। आप यूरोप को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए कि उन्होंने इन चीजों पर फोकस किया है। महोदय, जैसे आप कह रहे थे, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और शोध पत्रिकाओं को पढ़ते रहते हैं हम लोग, उसमें अब योग अब पूरे विश्व में फैल चुका है, उसकी सार्थकता अब लोग महसूस कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। अमेरिका के 2-3 विश्वविद्यालय जिसको मैं जानता हूं, वहां पे योग एक शोध का विषय दिया गया है। तो हमने किसी प्रोफेसर से पूछा, अमेरिकन प्रोफेसर से, भाई आप शोध क्यों कर रहे हैं जब आपको फायदा हो रहा है? तो कह रहा है इसमें और धार देने के लिए, इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता को विकसित करना चाहते हैं और भारत के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। हमको ये लगता है कि उसमें और व्यावसायिकता ला करके उससे धन कमाने की एक तरीका सोच रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इसमें विश्वास उनका अटूट और होता लग रहा है, उसमें विज्ञान का समावेश कर रहे हैं जो कि पहले नहीं करते थे। योग सिर्फ एक हिंदुस्तान की देन है दुनिया को, ऐसी ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, विविधताओं से भरा ये देश रहा है। हमको लगता है कि अब वो समय, जैसे कहते हैं कि ये देश इस समय एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, हमको लगता है कि इतिहास में इससे अच्छा समय कभी रहा नहीं होगा। और बहुत ही धनी हम लोग इस समय हैं कि एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को मिले हैं जो कि हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और प्रतिदिन कर रहे हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे नाम लेकर उनका उनसे प्रेरित होते हैं, चाहे वो स्कूल की ही क्यों ना हो, दूर दराज का क्षेत्र ही क्यों ना हो, हर जगह। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में काम करता हूं, पहले ICAR में काम करता है, तो ढेर सारे गांव में जाने का अवसर हमें, महोदय, उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कृषि आधारित समर्थन के लिए। कैसे गांव में जाएं आप, उनको कृषि में कैसे तकनीकियों के बारे में बताएं और कैसे सनातन कृषि के बारे में बताएं, ताकि किसान उससे प्रेरित होकर के इसका प्रयोग करें और उत्पादन ऐसे दे समाज को जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकर है, वातावरण के लिए हितकर है, और आज ही नहीं कल के लिए भी। महोदय, हम लोग 15 जिलों में प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। शुरुआत के दौर में थोड़ी कठिनता आई थी, विश्वास नहीं हो रहा था किसानों को, लेकिन जैसे ऐसे कर रहे हैं उनको बताते हैं कि भाई देखिए आप रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, ये घातक है पानी के लिए, जो इन जो खास तौर से जिनका प्रयोग हम खेती में करते हैं, चाहे पानी हो चाहे मिट्टी हो, इसको प्रदूषित करते हैं, इससे उत्पादित अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप गोबर की खाद पे आधारित खेती पे आइए। कैसे आप देखिए कि किस पौधे कैसे म्यूजिक से प्रभावित होते हैं, उनसे बात करिए, खेतों में जाइए, आप आपके आपकी विचारधारा को पौधे समझ सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हमको लगता है समय लगेगा, किसानों को जिनकी जीविका किसी पर आधारित है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही कुछ किसान ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक खेती पहले नहीं करते थे, विश्वास नहीं था, लेकिन एक साल दो साल जब किए उनको लगा कि उनकी लागत घटने लगी है और उनके उत्पाद की कीमत बाजार में बढ़ने लगी है, तो ऐसी चीजों के बारे में उनका झुकाव आने लगा है। ऐसे किसानों की संख्या हमारे विश्वविद्यालय में, हमको लगता है कि ढेर सारे कृषि विश्वविद्यालयों में उनके उनका फूड स्टेप्स बढ़ने लगा है, आने लगे हैं, ढेर सारी जानकारी मांगते हैं, देते हैं। हमको लगता है कि एक ऐसे विषय पर इस विश्वविद्यालय ने ये जो 4-5 दिनों का कार्यक्रम किया है और जो विषय इन लोगों ने चुना है, आप लोगों ने, हम आपको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि एक ढेर सारी सूचनाओं का एकत्रण आप करेंगे और उसको शेयर करेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हिंदुस्तान के सारे जगहों पर, और अगर इसका प्रकाशन करते हैं तो हम लोगों को भी दिया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो है और बहुआयामी तरीके से खेती में इसका प्रवेश किया जाए। और चूंकि हम लोग विश्वविद्यालय हैं, केवीके हमारे पास हैं, तो किसानों का विश्वास ऐसे तंत्र में है, तो उम्मीद है कि ये सनातनी कृषि आने वाले दशकों में हमारे खेती को और मजबूत बनाएगा और इसमें एक नई व्यावसायिकता आएगी और ऐसे उत्पाद समाज को मिलेगा देश के लिए, दूसरे देशों के लिए, जिससे किसानों का फायदा होगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा और एक वातावरण स्वस्थ होगा जिसमें एक बार पुनः लोग स्वस्थ तरीके से एक नए भारत में, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र हो जाएंगे और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होंगे, और ऐसी सूचनाओं का एकत्रण दूसरे देशों से भी शेयर करें हम लोग, तभी हम लोग एक विश्वास पैदा करेंगे विश्व समुदाय में और हमें जो है विश्व शक्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, विश्व गुरु होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। एक नई प्रेरणा मिलेगी मोदी जी की लीडरशिप से, खेती के तरीके से, क्योंकि खेती एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपका बहुत ही सफल होगा, हमें यहाँ आने का अवसर दिया आप लोगों ने, हम बहुत ही प्रसन्न हैं अपने विचारों से जो यहाँ पे देखे हैं, जो अनुभव हुआ है। हम जाएंगे और आपके परिसर में जब हम घुसे हैं तो यहाँ पे यहाँ के शिल्प को देख करके, पौधों का जो विन्यास लगाया गया है उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों ने इसको लगाया है, प्रेरक है, अनुकरणीय है। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आशा करते हैं कि हम लोग फिर पुनः मिलेंगे। मैं एक अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और आप स्वस्थ रहें, ईश्वर में विश्वास रखें और अपने सनातनी धर्म में विश्वास रखें। सभी लोगों का नाम।
कृषि उत्पादन को बढ़ावा, एक आपका सम्मान करके प्लीज 2 मिनट। आदरणीय भ्राता डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी का खूब खूब धन्यवाद। हम सभी के बीच में से अभी आदरणीय भ्राता रूपाला जी विदाई ले रहे हैं, तो पहले हम आपको भगवान के घर का एक बहुत ही सुंदर सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। ये शॉल नहीं है लेकिन परमात्मा के घर का सुरक्षा कवच है। आप सदा सुरक्षित रहें, आपके द्वारा देश की उन्नति दिन गुनी 4 चौगुनी होती रहे, इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बार बार पधारते रहिए और इस सभा की शोभा को दिव्य प्रेरणा देते रहे, इसी दुआओं के साथ। जो भी मेहमान सभा में से जा रहे हैं, मेरा आप सबसे नम्र अनुरोध है कि आप वापस यहाँ पर आएं, क्योंकि आज आप सभी के लिए गॉडली गिफ्ट है।
परमात्मा के घर की अभी कुछ ही समय के बाद आपको सौगात मिलेगी, वो स्वीकार करने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम सभी अब उस दिव्य विभूति से मिलने जा रहे हैं कि जो इस पूरे ज्ञान सरोवर परिसर के डायरेक्टर जनरल हैं, जो भी यहाँ मेहमान आते हैं उनकी पालना करना, प्यार देना, बहुत ही अच्छी तरह से उनकी खातिरी मेहमान निवाजी करना, यह भगवान ने आपको जिम्मेवारी दी है। आदरणीय प्रभा दीदी जी, आपको हम सब सम्मान आमंत्रित करते हैं कि आज के कार्यक्रम में अपने शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आप यहाँ के तो डायरेक्टर है ही हैं, लेकिन साथ में आप गुजरात के भरूच जिले के मुख्य उपक्षेत्रीय संचालिका हैं। आपके निर्देशन में अनेक ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र वहाँ कार्यरत हैं और गुजरात के एजुकेशन विंग के भी आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका हम इस सभा के अंदर आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, आदरणीय प्रभा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा, शिवपिता परमात्मा की प्यारी प्यारे संतानों, विशेष आज आप सभी ग्राम विकास जो हमारी विंग है उसके द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, आप विशेष पधारे हैं। साथ में हमारे मंच पर विराजमान सभी हमारे साथी, हम सभी विशेष सुन रहे थे कि कैसे कृषि के अंदर उस कृषि को कैसे हम योगिक और प्राकृतिक कृषि बनाए, जिससे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है तो साथ साथ विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। उसमें विशेष बात आ रही थी आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए परमात्मा ने भी हम आत्माओं को एक विशेष स्लोगन दिया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब तक स्व परिवर्तन नहीं होगा तो विश्व का परिवर्तन भी नहीं होगा, और स्व परिवर्तन से ही हम सभी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें विशेष स्व की पहचान चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है। हम सभी अभी देह की बातें सुन रहे थे कि कैसे ये शरीर के द्वारा शरीर के कार्य करते हैं। आप सभी विशेष जो भी कृषि के क्षेत्र से आए हैं, तो विशेष कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कृषि में जो अन्न है वो अन्न जो है शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो वैसे भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न का मन के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो अन्न है वो कैसा बनता जा रहा है वो तो आप सब जानते ही हैं, और उसके लिए भी विशेष प्राकृतिक जो होना चाहिए और उस प्रकृति के अंदर भी विशेष जो शुद्ध और श्रेष्ठ अन्न, जो श्रेष्ठ अन्न हम किसको कहेंगे, जो कि हमारे ग्राम विकास के द्वारा बताया जा रहा है कि अन्न को श्रेष्ठ बनाने के लिए सिर्फ प्राकृति की नहीं, लेकिन प्राकृतिक के साथ साथ हमें उसमें विशेष जोड़ना है योगिक खेती, कि जो अन्न है उसके ऊपर भी वाइब्रेशन का असर पड़ता है, तो जैसे वाइब्रेशन होते हैं वैसा अन्न उगता है। जैसे हमारे आगे के वक्ता ने बताया कि पहले खेतों के अंदर ऐसे गीत गाए जाते थे तो उसका असर जो है खेतों के ऊपर पड़ता था, तो उसको धार्मिक रीति से लेते थे तो अन्न कितना श्रेष्ठ होता था। और आज वही अन्न जो है वो क्या बन गया है हम देखते हैं, तो अन्न दिन प्रतिदिन जो है वो तमो प्रधान बनता जा रहा है। तो उसको सतो प्रधान और श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें उसके साथ में हमें योग को जोड़ना होगा। और योग क्या है, योगिक खेती योग क्या है, तो योग के बारे में भी आपको विशेष यहाँ पर बताया जाएगा। आप सभी विशेष अपना समय निकाल करके यहाँ ज्ञान सरोवर परिसर में पहुँचे हैं। जो ज्ञान सरोवर परिसर है, जो प्राकृतिक के आधार पर और प्राकृतिक की गोद में इतना सुंदर ज्ञान सरोवर बना है, जिस परिसर के अंदर आप 3 दिन रह करके कैसे अपने जीवन को भी और साथ साथ आपका जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो विशेष यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे हम अपने स्व के ऊपर विशेष ध्यान दें। क्योंकि आज हम व्यवसाय के ऊपर ध्यान देते हैं, तन के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन मन तो फिर भी हमारा क्या रहता है, परेशान रहता है। आज सब कहते हैं कि मन को शांति चाहिए, मन को सुख चाहिए, कोई तन को शांति चाहिए तन को सुख चाहिए ऐसे नहीं कहते। मांगते जरूर हैं, प्रयत्न जरूर करते हैं तन के लिए, लेकिन फिर भी कहते जरूर हैं कि हमको मन की शांति चाहिए, मन की सुख चाहिए। तो मन को शांत और सुख बनाने के लिए हमें विशेष राजयोग की आवश्यकता है। तो जिससे ही हमारा मन शांत और सुख बनेगा, जितना हमारा मन शांत होता है उतना हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें मन की शांति बहुत आवश्यक है। तो मन की शांति क्या है, वो मन की शांति यहाँ पर बताई जाएगी कि कैसे हम अपने मन को शांत बनाएं। जो मन हमारा शांत होगा तो कोई भी जो कार्य किया जाता है जो शांत मन से करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती है। आज मनुष्य जीवन में जो दिन प्रतिदिन निसफल होता जाता है उसका मूल कारण यही है कि मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। तो शांति को अगर हम अपने जीवन के अंदर लाएंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। और जो जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा तो इस जीवन के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य भी हमारे श्रेष्ठ होंगे। तो जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको मन के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। तो मन को शांत कैसे बनाया जाए, तो मन को शांति के लिए विशेष चाहिए राजयोग, जिस योग के द्वारा ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो योग क्या है वो आपको यहाँ 3 दिन के अंदर बताया जाएगा कि कैसे राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, शांत में बना सकते हैं। इतना सुंदर हम सबको ये जीवन मिला है तो इस सुंदर जीवन को हम सुंदर कैसे बनाएं, उसकी विधि विशेष आप सबको यहाँ पर मिलेंगी। आप सभी ज्ञान सरोवर में आए हैं तो कहते हैं ना कि सरोवर में, उसके लिए कहावत कही जाती है कि सरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि सागर में डुबकी लगाने से ही रतन मिलते हैं, जितना उसकी गहराई में जाते हैं उतना रतन मिलते हैं। वैसे ही आप सभी इस ज्ञान सरोवर में आए हैं, 3 दिन यहाँ पर आप सबको ये ज्ञान की डुबकी लगाई जाएगी, और जितना आप उसकी गहराई में जाएंगे, जितना उसका मनन चिंतन आप सभी करेंगे, तो जरूर आप यहाँ से ज्ञान रत्न लेकर के जाएंगे, जिन रत्नों से आप अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बना सकेंगे। यही हमारी आप सबके प्रति शुभ आशा है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभा दीदी जी। कल से ही आप सभी को मैं फिर से रिमाइंडर देती हूँ, कल से लेकर 26 तारीख तक रोज सवेरे 6:30 से पहले आप यहाँ पहुँचेंगे जरूर, और रोज ही आपको पहले फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाएगी और फिर मानसिक एक्सरसाइज, जो राजयोग है, ब्रह्मा कुमारी संस्था की अमूल औषधि है, जो तन और मन के स्वास्थ्य की एक जड़ी बूटी है, वो प्रतिदिन इस राजयोग का अभ्यास आप सभी को यहाँ के प्रबुद्ध वक्ताओं के द्वारा कराया जाएगा। अभी हम सभी उस विशेष हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम और स्वभाव एक ही है। नाम है परम आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, और स्वभाव भी उसी सरल और नम्रता से श्रृंगारित है। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा है, आज के हमारे उद्घाटन सत्र के भी आप अध्यक्षा है। आपके द्वारा अथाग मेहनत और प्रयत्न ऐसे किए गए पूरे भारत देश के अंदर, जो 1, 2, 5, 50 नहीं, हजारों किसानों ने आज यह कृषि संस्कृति को यौगिक संस्कृति में परिवर्तन कर अपने खेतों के अंदर एकदम निर्दोष हरियाली को तैयार किया है। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सरला दीदी जी, आप मेहसाणा सब जोन के भी जोनल इंचार्ज हैं और हजारों भाई बहनों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं।
ओम शांति। सचमुच आज के इस सेशन को देखते और सुनते हुए अंदर से अत्यंत हर्ष हो रहा है और खुशी हो रही है। आप सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो मुझे ये याद आ रहा था, जिस समय हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए विषय का चयन करने के लिए प्रभाग के मेंबर्स एकत्रित हुए, कई सारे विषय निकले, लेकिन अंत में सबके अंदर से ये एक ही आवाज निकला कि वर्तमान समय जिस चीज की ताती आवश्यकता है, और वो है हमारा ये देश समृद्ध बने, स्वर्णिम बने, और उस समृद्धि और स्वर्णिम भारत का आधार वो है सशक्त किसान, और किसान के सशक्तिकरण के लिए आवश्यकता है हमारी प्राचीन जो सनातन कृषि संस्कृति है, उस कृषि संस्कृति के प्रति उसको जागृत करना, उसके विश्वास को बढ़ाना, और उस विश्वास का आधार है आध्यात्मिकता। ऐसे कुछ बातों को लेकर के इस विषय का चयन किया गया, और आज उसके शुभारंभ मंच पर आज के हमारे उद्घाटक माननीय भ्राता रूपाला जी, जिन्हों के साथ विद्यालय का, हम बहनों का बहुत नजदीक का संबंध है, और आपको भी प्रभाग की इस एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंटरेस्ट है। अभी भी लास्ट में बोल करके गए कि जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आप बहनों के साथ में हूं। ऐसे आज के उद्घाटक श्री, साथ ही साथ अतिथि विशेष माननीय भ्राता आनंद कुमार जी, कुलपति कानपुर कृषि विश्वविद्यालय, वहां से आप हमारे बीच पहुंचे हैं, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय से, और हमारे बद्री विशाल भाई, आप जिन्होंने बहुत अच्छी रीति से इस विषय को स्पष्ट किया। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका हमारी सुनंदा बहन, साथ ही साथ मंच का सुंदर संचालन करने वाली आप भी हमारे इस कृषि विद्यालय ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, हमारे आबू कोऑर्डिनेटर सुमंत भाई, बद्री विशाल भाई ने विषय को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया। आपके अंदर से वो अविरत धारा बह रही थी कि कैसे हम इस सनातन कृषि संस्कृति से, जिससे काफी भाई बहने मैं समझती हूं यहां परिचित भी होंगे, लेकिन उसको हम अपने किसानों तक पहुंचाएं, उसको एक प्रैक्टिकल स्वरूप दें, तो वो क्या है उनको आपने भावनाओं के साथ स्पष्ट किया। उसमें से एक वाक्य अगर हम सब अपने किसानों को महसूस करा दें, मैं समझती हूं कि शायद उनके अंदर वो भावना जागृत होगी। जानते हैं लेकिन आवश्यकता है रियलाइजेशन की। और वो शब्द आपने कहा कि धरती हमारी माता है, माता से प्यार किया जाता है, माता को पॉइजन नहीं दिया जाता है। अगर बच्चा ये समझ ले कि ये पॉइजन है, उस चीज की महसूसता उसमें आ जाए, तो परिवर्तन होगा। और उस महसूसता का आधार है ये आध्यात्मिक ज्ञान। इस ज्ञान से किसानों का सशक्तिकरण होगा, जिसको उन्होंने राजयोग और कई हमारे एग्जाम्पल्स को देकर के स्पष्ट किया। ठीक इसी प्रकार से माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी भी बड़ी सहज और सरल भाषा में इस गहन विषय को स्पष्ट कर रहे थे कि प्राचीन काल में कैसे एक एक का महत्व होता था, महाजन के ऊपर जवाबदारी होती थी। इसको स्पष्ट करते हुए वो किसान पर पहुंचे कि ये किसान इसीलिए बनाया है जो धरती से हमको ये अनाज उगा करके देता है, और उसको ये टाइटल दिया गया कि वो इस देश का तात है, पिता है, अन्नदाता तो है ही। उन्होंने भी बहुत अच्छी रीति से विषय को स्पष्ट किया। इसी प्रकार से हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार, आपने कई सारे डेटा देते हुए और इसे स्पष्ट किया। रूपाला जी ने एक बात कही कि लोग आध्यात्मिकता के नाम से चढ़ाते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि प्रभाग ने सब क्षेत्रों में सेवाएं की हैं, कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी, कृषि अधिकारियों के साथ भी और ग्रामीण के साथ भी। सभी तरफ से हमें ये प्रतिभाव प्राप्त हुआ है कि अब इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता ये धर्म नहीं है। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको यही करना है। आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान है उसी प्रकार से आध्यात्मिकता भी एक आध्यात्म जगत का विज्ञान है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन दोनों के समन्वय से ये संसार चल रहा है। उस आध्यात्मिक विज्ञान को किसानों को जागृत करने की आवश्यकता है, जानते वो भी हैं। और मैं तो हमेशा किसान भाइयों को देख करके ये महसूस करती हूँ कि आज इस देश का अगर बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है तो वो कौन है? किसान है। उसने कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं ली है, लेकिन डिग्री लेने वालों को भी अपने अनुभव के आधार से वो सिखाता है कि बेटा अभी खेत में ये डालने की सीजन नहीं है, अभी इस चीज को और इस ढंग से डालना। आप इस बात के साथ सम्मत हैं? सम्मत हैं? तो सबसे बड़े साइंटिस्ट जिसकी आज ये दुर्दशा है वो आत्महत्या कर रहा है। तो हम आप सबका ये कर्तव्य है, प्रभाग इस दिशा में बहुत मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है कि हमारे देश का किसान सशक्त बने। जब तक किसान सशक्त नहीं बनेगा तब तक चाहे सरकार की नीतियां हो अथवा हम अपनी सनातन कृषि संस्कृति की बात करें, वो प्रैक्टिकल होने में देरी लगेगी। इसलिए प्रभाग ने पहला लक्ष्य ये रखा है कि हम अपने किसानों को सशक्त बनाएं, उनके अंदर जागृति आएगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगे, तब ये गांव आत्मनिर्भर बनेगा और हमारा भारत वो स्वर्णिम दुनिया का जो नजारा हम देखना चाहते हैं, समृद्ध और स्वर्णिम भारत, हम उसको देख सकेंगे। मैं समय मर्यादा के कारण से अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि काफी समय हो चुका है और अभी भी एक दो वक्ता हैं, लेकिन भविष्य में हम अवश्य इस पर चर्चा करेंगे। मुझे एक संकल्प वहां बैठे आप सबको देख करके ये चल रहा था कि इस विषय को न्याय देने के लिए आप सब अलग अलग प्रांतों से, और कोई हमारे वैज्ञानिक हैं, कोई अधिकारी हैं और कोई अनुभवी किसान है अथवा एनजीओ से आप लोग आए हुए हैं, सुझाव देना बड़ा सहज है, चर्चा करना बड़ा सहज है, व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन हम केवल सुझाव और चर्चा ना करें, हम आपस में मिलकर के ऐसी कोई योजना बनाएं। मैंने रूपाला जी को विकार के साथ में जो उन्होंने सुनाया कि हम ये मॉडल बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, और उन्होंने हमारे से बात करते हुए ये शब्द कहा कि ये मॉडल उससे भी अच्छा है क्योंकि इसमें किसानों की इनकम के लिए बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। तो आप ICR के साथ में मिलकर के दोनों कुछ आगे करें। और उन्होंने जो ये कृषि विज्ञान केंद्र का मिसाल दिया कि वहां पर हम करेंगे तो उससे भी सरकार तक आवाज जाएगी। मैंने कहा उन किसानों का आवाज पहुंचाने के लिए आप जैसे लोगों को एक माध्यम बनना पड़ेगा, आपके सहयोग से हम उस कार्य को और आगे ले जा सकते हैं। तो आज के इस उद्घाटन सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे ये एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि ये 3 दिन के लिए जब आप उस दुनिया को छोड़ करके इस अलौकिक जगत में पहुंचे हैं और जिस कार्य के निमित्त पहुंचे हैं तो हम उस कार्य को पूर्ण करें। और सेशन में आपकी उपस्थिति रहे, आपके कोई सुझाव हो, ये संभव नहीं है कि हम सभी को मंच दे सकें, भावना है परंतु संभव नहीं है। तो मंच भले आपको न प्राप्त हो लेकिन आपकी भावनाएं आप लिखित रूप में भी हमको दे सकते हैं और अलग टाइम मांग करके भी हम आपके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करें जो एक ठोस प्लान बने, सरकार के साथ तक भी, किसानों के लिए भी, हम सब एक ब्रिज का काम करके पुनः भारत को आत्मनिर्भर और स्वर्णिम बनाने का कार्य करें। इन्हीं श्रेष्ठ शुभ और मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।
बहुत ही सरल भाषा में आदरणीय दीदी जी ने 5 दिवसीय हमारी इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या प्राप्त होगा और हम आपसे क्या चाहते हैं, ये दोनों ही बातें स्पष्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कुछ समय के लिए, सिर्फ 3 मिनट के लिए ध्यान अनुभूति, योग अनुभूति, शांति अनुभूति करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी जी, हम आपसे निमंत्रित कर रहे हैं कि पधारे और इस योग अभ्यास का, जो आपने गहन अभ्यास
पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से कर रहे हैं वो हम सभी के सामने शेयर करें। आदरणीय सुनंदा दीदी जी हमारी कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका हैं। बचपन से ही आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। कोल्हापुर और पुना मीरा सोसाइटी के सब जोन इंचार्ज हैं। हम सभी को योग अनुभूति कराएंगे आदरणीय सुनंदा दीदी जी।
ओम शांति। अभी यहाँ पर रेड लाइट लगेगी और हम सभी जितनी भी बातें हमने सुनी उन सब का सार अनुभव करेंगे। ग्राम स्वराज, स्वराज का अर्थ होता है राजा। किसान भी राजा बने, हम भी राजा बने और भारत वापस स्वर्णिम भारत बने, उसका आधार है राजयोग। तो राजयोग की पहली स्टेज है आत्मचिंतन। राजा बनने वाला मैं कौन? राजा के पास दो शक्तियां होती है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जो करना है उसके लिए रूलिंग पावर, जो नहीं करना है उसके लिए कंट्रोलिंग पावर। तो चलते हैं हम, अभी अपने अंदर जाएंगे 3 मिनट के लिए। बहुत सुंदर स्वयं की अनुभूति करेंगे। मैं कौन? ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है जो ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए मिला हुआ है, लेकिन इस शरीर के द्वारा हर कर्म कराने वाली मैं कौन? आ जाओ अपने स्मृति में। बहुत सुंदर मैं एक चेतना हूं। दो भ्रुकुटी के मध्य फील करो स्वयं को। मेरा स्थान है जो मैं राजा हूं, भ्रुकुटी मध्य सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरा स्वरूप है प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट। और मुझ आत्मा से, मुझ प्रकाश से निरंतर प्रवाहित होती है शांति, आनंद, प्रेम, सुख, शक्तियां और पावित्र्य अनुभव करो। आप स्वयं ही शांत स्वरूप, शक्ति रूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, चेतना है, राजा है इस इंद्रियों का। बहुत शांत 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 हूं मैं। मेरा निजी धर्म है शांति, और शांति के सागर पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। मेरे लिए गौरव की बात है, नशे की बात है कि मैं परमात्मा की संतान हूं। और अभी फील करो उस परमात्मा से मुझ आत्मा की ओर असीम शांति, प्रेम प्रवाहित हो रहा है। बहुत ईश्वरीय प्यार संतान के नाते से मुझ आत्मा को मिल रहा है। आंखें बंद करो, स्वयं का दर्शन लो। आप एक पॉइंट है, चेतना है, और सभी प्रकार के वैल्यूज से, पॉजिटिव पावर से संपन्न है। आंखें खोलो। ओम शांति।
भूति के बाद अभी हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, और वह है आभार। सभी का आभार प्रकट करने के लिए पधार रहे हैं ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी। 19 से भी अधिक वर्षों से आप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में अपनी सेवाएं यहाँ माउंट आबू में मधुबन घर में दे रहे हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप मुख्यालय संयोजक हैं। यौगिक कृषि पर आपने 15 से भी अधिक कृषि विश्वविद्यालयों में प्रस्तुति दी है। यौगिक खेती की प्रस्तुति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भी आप भाग ले चुके हैं। आदरणीय सुमंत भाई जी।
ओम शांति। स्वयं परमात्मा ने हम सबको पुकारा और उस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार करके आज हम एक साथ हैं, और बहुत सुंदर विषय पर, सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज। इसमें सबसे पहले आज की सभा की शोभा आदरणीय प्रभा दीदी जी, जिन्होंने स्वयं परिवर्तन का संदेश दिया। आदरणीय सरला दीदी जी, विशेष हमें एक नई योजना की प्रेरणाएं दी। और आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी विशेष यहाँ पे पधारे, और आपने जो है अपनी ओजस्वी वक्तव्य के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। हमारे वाइस चांसलर साहब कानपुर से पधारे, आजाद चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से आपने अपने बहुमूल्य संदेश यहाँ पे प्रस्तुत किया, आपका भी धन्यवाद। साथ में हमारे बद्री विशाल जी, जिन्होंने विशेष करके आज की विषय को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया, आपका भी धन्यवाद। हमारे तृप्ति दीदी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर रूप से मंच संचालन किया, इनके साथ में हमारी सुनंदा दीदी जी, विशेष योग अभ्यास सभी का कराया। आदरणीय राजू भाई जी, जिन्होंने विशेष करके सभी का स्वागत अभिनंदन किया, आपका भी विशेष वंदन इस सभा में। इतना ही नहीं बल्कि मधुरवाणी ग्रुप ने विशेष बहुत सुंदर गीत गाया, और मैसाना से पधारे जो भी डांस ग्रुप है उसने भी बहुत अच्छी डांस करके सब दिखाया। और आप सब धैर्यतापूर्वक, ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जिसमें कृषि अधिकारी भी है, वैज्ञानिक भी है, कॉरपोरेट्स भी है, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स ही भी है, बीके गाइड भी है, और बीके भाई बहने, और सभी ज्ञान सरोवर के विभिन्न विभाग के सभी जो भी भाई बहने हैं, उन सभी का भी विशेष विशेष इस मंच के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ओम शांति।
कम शब्दों में लेकिन हृदय के भाव के साथ आदरणीय सुमंत भाई ने सभी का आभार प्रकट किया। आपका भी भाई जी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अब समय है समाप्ति का, इस सत्र का। उनसे पहले हमारे मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि को शॉल और प्रसाद के द्वारा सम्मानित करेंगी हमारी वरिष्ठ दीदियां, आदरणीय सरला दीदी जी और आदरणीय प्रभा दीदी जी। प्रसाद और शाल अर्पण करके आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी का सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं हम सब तालियों से। इस अभिनंदन की श्रृंखला को और खुशबूदार बनाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है। यह शॉल आप जो स्वीकार कर रहे हैं वो भगवान के घर की एक अमर यादगार है और स्वयं परमात्मा शिव आपको गिफ्ट में मिल रहे हैं। सदा ही आपकी परमात्मा के द्वारा रक्षा होती रहे, ऐसी हम सभी बहनों की तरफ से दुआएं हैं। अभी हम 2 मिनट परम कृपालु परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे।